आगे सबक देखिए भाई, मतन वस्सादिसु अन्नहु फी अय्यि मर्तबतिन हुआ लियुकद्दम अला मा यजिबु वयुअख्खर अम्मा यजिब والسابع القسمة والتبويب ليطلب في كل باب ما يليق به والثامن الأنحاء التعليمية وهي التقسيم أعني التكسير من فوق والتحليل عكسه. गुज़श्ता सबक में रुउस समानिया के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था. मुसन्निफ ने आपको बतलाया कि कदीम उलमा जो हैं वो अपनी किताबों के आगाज में आठ अहम और बुनियादी बातों को जिक्र किया करते थे जिनको रुउस समानिया कहते हैं. और मैंने बतलाया ये इलम से खारिज हैं, इनकी वजह से इलम में फायदा होता है, पूरी बसीरत हासिल होती है. और ये आठ चीजों में से हमने पांच चीजें पढ़ ली थी भाई. पहली चीज थी इलम की गरज, तो सबसे पहले गरज के बारे में बतलाया जाए कि इस इलम की गरज क्या है, इसका मकसद क्या है. और दूसरी चीज जो थी वो इस इलम का नफा है भाई. नफे और गरज में मैंने बतलाया था बारीक फर्क है भाई. किसी काम को करने की जो इल्लत होती है उसको गरज कहते हैं, और काम हो जाने के बाद उसी गरज को फिर गायत कहते हैं और मनफियत कहते हैं और फायदा कहते हैं. तो फायदा आम है भाई और गरज खास है. गरज उस काम की इल्लत होती है, उसकी वजह से कोई काम किया जाता है, और वो काम होने के बाद कभी गरज हासिल होती है और कभी गरज हासिल नहीं होती. और अगर गरज हासिल हो जाए तो वही फिर उस काम का नफा भी है और गायत भी है. और नफा सिर्फ यही नहीं, नफा इसके अलावा भी हो सकता है. एक चीज के बहुत से फायदे हो सकते हैं, तो वो फायदा जो सबब बना था इस काम के लिए उसको इल्लत कहेंगे, और बाकियों को फवायद मनफातें और गायतें कहेंगे भाई. और ये जो फायदा होता है ये लोगों को तरगीब दिलाता है उस चीज की. किसी चीज के जो फवायद और मुनाफे होते हैं वो उस चीज की तरगीब दिलाते हैं. तलबा उस इलम को हासिल करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हर तरह की तकलीफें बर्दाश्त करते हैं उसके फायदों को देखते हुए. और उस समानिया में से फिर तीसरी चीज जो थी वो उस इलम का उन्वान है, यानी यूं कहो वजह तस्मिया है कि इस इलम का यह नाम क्यों रखा गया, ताकि तालिब इलम को इजमाली तौर पर उस इलम के बारे में पता चल जाए भाई. और चौथी चीज जो है उस इलम के या उस किताब के मुअल्लिफ के बारे में उसको बतलाया जाता था कि किसने इस फन की तदवीन की या किसने इस किताब को लिखा, ताकि तालिब इलम के दिल को इत्मीनान हासिल हो कि वो किसी बड़े आलिम की किताब पढ़ रहा है. और पांचवीं बात ये उसको ये बतलाया जाए कि यह किस नौ का इलम है, कि उलूम अकलिया में से है या उलूम नकलिया में से है, उलूम असलिया में से है या उलूम फरइया में से है, ताकि तालिब इलम उसी जिन्स के मसाइल इसमें तलब करे भाई. जैसे मंतिक के बारे में इन्होंने आपको बतलाया कि उसमें उलमा का हुकमा का इख्तिलाफ है, बाज इसको हिकमत में से करार देते हैं और बाज इसको हिकमत से खारिज करार देते हैं. तो अगर हिकमत की तारीफ में आयान की कैद लगा दी जाए तो मंतिक उससे खारिज है, क्योंकि मंतिक आयान से बहस नहीं करता बल्कि मंतिक जो है वो मफहूमात से बहस करता है. और अगर आयान की कैद को उससे खारिज कर दिया जाए तो फिर मंतिक उसमें दाखिल होगी, इसलिए क्योंकि मौजूदात के अंदर मौजूदात जहनिया भी आ गए और मौजूदात वाकईया और खारिजिया भी आ गए, तो इस सूरत में इन्हें मंतिक हिकमत में से होगा. और फिर हिकमत के अंदर यह हिकमत नजरिया में से होगा. मैंने आपको बतलाया था कि अल्लाह ने इंसान को दो कुव्वतें नसीब फरमाई हैं, एक कुव्वत अमलिया और एक कुव्वत इल्मिया. कुव्वत अमलिया अमल करने की कुव्वत, कुव्वत इल्मिया जानने की कुव्वत भाई. और हिकमत के जरिए इन दोनों कुव्वतों की तकमील होती है, या यूं कहें कि ये जो हिकमत है इसके जरिए इंसान की कुव्वत अमलिया भी उरूज तक पहुंचती है, और हिकमत ही के जरिए इंसान की कुव्वत इल्मिया भी उरूज तक पहुंचती है भाई. तो ये ऐसी तकसीम की है, इसके अंदर कुरान और हदीस पर जो अमल है वो भी इसके अंदर दाखिल हुआ, और इसी तरह तमाम साइंस भी इसके अंदर दाखिल हो गई. बात समझ में आ रही है? तो मैंने आपको बताया था इंसान को अल्लाह ने दो कुव्वतें नसीब फरमाई हैं, एक कुव्वत अमलिया और एक कुव्वत इल्मिया। और इसी तरह जो मौजूदात हैं वो भी दो किस्म पर हैं, कुछ मौजूदात वो हैं जो हमारे इख्तियार में हैं, हमारी कुदरत में हैं, और कुछ मौजूदात वो हैं जो हमारे इख्तियार और कुदरत में नहीं हैं। और हमारे इख्तियार में जो मौजूदात हैं वो आयान भी हो सकते हैं और अफाल भी हो सकते हैं। जैसे ये देखो, आप देखते हैं जो जो चीजें इंसान ने बनाई हैं, ये घर है, ये गाड़ियां हैं, ये साइंस की चीजें हैं, ये सब किसके अंदर आ गई, ये आयान मौजूदा के अंदर आ गई। और इंसान के जो अफ़ाल हैं वो अच्छे अमल करता है या बुरे अमल करता है, ये अफ़ाल के अंदर आ गए। तो वो मौजूदात जो हमारे इख्तियार में हैं वो आयान भी हो सकते हैं और अफ़ाल भी हो सकते हैं। तो ये दाखिल हैं हिकमत अमलिया के अंदर भाई। तो हिकमत अमलिया के अंदर वो चीजें, वो मौजूदात जो इंसान के इख्तियार में हैं, उनके हालात से बहस की जाती है। और हिकमत नजरिया में उन मौजूदात के बारे में बहस की जाती है जो हमारे कुदरत और इख्तियार में नहीं है, जैसे जमीन है, आसमान है, ये सैयारे हैं, सितारे हैं, सूरज है, और ये दुनिया में पहाड़ हैं, दरिया हैं, हैवानात हैं, इंसान हैं, ये जो हमारे इख्तियार और कुदरत में नहीं है, जिनका वजूद, ये सब चीजें इसके अंदर दाखिल हो गई। हिकमत अमलिया के जरिए हम अपने अमल को उरूज पर पहुंचाते हैं, यानी वो चीजें जिनमें हमारा फायदा है, नफा है, दुनियावी एतबार से और आखरत के एतबार से, उनकी तरफ हम मुतवज्जे होते हैं, वो चीजें बनाते हैं और वो वाले अफाल करते हैं जिनमें हमारा फायदा है। जबकि हिकमत नजरिया उसमें ये चीजें जिनका जो हमारे इख्तियार में नहीं है उनका सिर्फ हम इलम हासिल करते हैं, क्योंकि इंसान की तबीयत में अल्लाह ने रखा है कि वो हर चीज को जानने की कोशिश करता है। जैसे मैंने मिसाल जिक्र की थी, कोई छोटा सा बच्चा भी हो, उसके सामने कोई नई चीज आती है तो वह अपने बड़ों से, वालिदैन से पूछता है कि यह क्या चीज है। तो यह इंसान की तबीयत में अल्लाह ने रखा है। तो ये जो हिकमत नजरिया है इसके जरिए सिर्फ कुव्वत इल्मिया की जो है उरूज पर पहुंचती है, उसकी तकमील होती है। ये सितारों का, ये कायनात का निजाम और इसका इलम, और इसी तरह ये दुनिया के अंदर जितनी चीजें अल्लाह ने बनाई हैं उनका इलम इंसान हासिल करने की कोशिश करता है। तो इसमें तमाम साइंस आ गई भाई, इन दोनों हिकमत अमलिया और नजरिया में हर तरह की साइंस आ गई भाई। और फिर ये जो हिकमत अमलिया है ये भी तीन किस्म पर, और हिकमत नजरिया जो है वो भी तीन किस्म पर है। हिकमत अमलिया जो है उसमें बहस होगी ऐसी मसलहतों से जिसका ताल्लुक एक फर्द से होगा, या उन हिकमतों का ताल्लुक एक घर में रहने वाले अफराद से होगा, या एक शहर और मुल्क में रहने वाले अफराद से होगा। अगर उन हिकमतों का ताल्लुक जिनके बारे में बहस होती है हिकमत अमलिया में, अगर उनका ताल्लुक एक फर्द से है तो उसको तहजीबुल अखलाक कहते हैं, और अगर उन हिकमतों के बारे में बहस की जाती है जिनका ताल्लुक एक घर में रहने वाले अफराद से हो, जैसे मां बाप और उनकी औलाद हैं, तो इसको तदबीर मंजिल कहते हैं, इस हिकमत अमलिया को। और अगर इसमें उन मसलहतों से बहस की जाती है जिनका ताल्लुक एक शहर या एक मुल्क के रहने वाले अफराद से हो, तो इसका नाम सियासत मदनिया है भाई। तो ये हिकमत अमलिया की तीन किस्में हो गई, और हिकमत नजरिया उसकी भी तीन किस्में हैं, इसलिए क्योंकि इसके अंदर जिन चीजों के अहवाल से बहस की जाएगी, या तो वो खारिज में और जहन में दोनों जगह मादे की मोहताज होंगी, या खारिज और जहन दोनों में मादे की मोहताज नहीं होंगी, या खारिज में तो मादे की मोहताज होंगी, जहन में मादे की मोहताज नहीं होंगी, तीन ही सूरतें बनती हैं भाई। हिकमत नजरिया की वो किस्म जो उन चीजों के अहवाल से बहस करती है जो न खारिज में मादे की मोहताज हैं न जहन में मादे की मोहताज हैं, तो उसको इल्म इलाही कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर अल्लाह की जात का इलम भी आ गया जो इनमें सबसे आला है यानी माबूद, इसलिए इसका नाम इल्म इलाही रखा गया। इन सब में सबसे आला किसका मकाम है? इलाह का, माबूद का है, इसलिए इसका नाम इल्म इलाही रखा गया। और नीज इसको इल्म आला भी कहते हैं, और फलसफा उला भी कहते हैं, इल्म कुल्ली भी कहते हैं, और माबादत तबीयत भी कहते हैं। तो देखो इसमें इलाह की बहस है, इल्म इलाही के अंदर इलाह की बहस है, और महबूद जो है यानी अल्लाह ताला जो है न खारिज में मादे के मोहताज हैं और ना जहन में मादे के मोहताज हैं। जबकि दूसरी किस्म जो है हिकमत नजरिया की वो है जिसमें उन चीजों के अहवाल से बहस होती है जो खारिज में भी मादे के मोहताज और जहन में भी मादे के मोहताज हैं, जैसे इंसान है, पहाड़ हैं, ये दुनिया है, ये चीजें जो आप देखते हैं। जैसे खारिज में देखो इंसान गोश्त और हड्डियों से बना है, जहन में भी इंसान का तसव्वुर करते हैं तो जहन में भी यही आता है कि ये किसका बना हुआ है, गोश्त और हड्डियों का। या जैसे और हैवानात हैं, या जैसे ये पहाड़ हैं, खारिज में जैसे आप देखते हैं जहन में भी इसी तरह इनका तसव्वुर करते हैं, ये इसी चीज पत्थर मिट्टी वगैरह से बने हुए हैं। तो ये वो चीजें हैं जो खारिज में भी मादे की मोहताज और जहन में जब इनका तसव्वुर करें तब भी उस मादे के साथ हमें तसव्वुर करना पड़ता है, तो ये जहन में भी मादे की मोहताज हैं। तो ये चीजें जो खारिज में भी मादे की मोहताज हैं और जहन में भी मादे की मोहताज हैं, इनके अहवाल से जिस इलम में बहस की जाती है हिकमत नजरिया की, वो किस्म इल्म तबीई कहलाती है। क्या कहलाती है? इल्म तबीई कहलाती है। या हिकमत नजरिया में उन चीजों के अहवाल से बहस की जाएगी जो खारिज में तो मादे के मोहताज हैं, जहन में मादे के मोहताज नहीं हैं, और उसको इल्म रियाजी कहते हैं। जैसे कुरा है, कुरा गोल जिस्म को कहते हैं। एक होता है दायरा, दायरा तो आप हुआ जो कलम से खींचते हैं भाई, समझ में। और एक गोल गेंद जैसा जिस्म है, इसको क्या कहेंगे? कुरा। दायरा, दायरा जो आप बनाते हैं सफे के ऊपर, देखो ये गोल है भाई, खत तो गोल है लेकिन ये पूरी गेंद जैसी सूरत है नहीं, गेंद जैसी सूरत नहीं, तो कुरा कहते हैं। वो गेंद, बिल्कुल गेंद नुमा चीज जो गोल हो उसको कुरा कहते हैं। कुरतुन, कुरतुन काफ रा और गोल ता है भाई, रा की तख़फीफ है, रा पर शद नहीं है, कुरतुन। इसी वजह से अरबी में जो फुटबॉल है इसको कुरतुल कदम कहते हैं, कुरतुल कदम। तो ये रियाजी है, इसमें ये कुरा है, कुरा है, मुरब्बा चार कोनों जिसके हो, मुरब्बा जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई हर तरफ बराबर हो, इसको क्या कहते हैं? मुरब्बा। और इसी तरह मुसल्लस है जिसके तीन कोने होते हैं। तो देखो ये चीजें हैं, ये कुरा है, ये मुरब्बा है, ये मुसल्लस वगैरह, ये सूरतें, ये चीजें जो हैं खारिज में मादे की मोहताज हैं। खारिज में जब भी कुरा होगा वो किसी न किसी मादे का होगा, या लोहे का होगा, या चांदी का होगा, या सोने का होगा, या पत्थर का होगा, या लकड़ी का होगा, किसी न किसी मादे का होगा। और जहन में ये कुरा वगैरह ये मादे का मोहताज नहीं। खारिज में अगर लोहे का कुरा है तो जहन में लोहे का कुरा तसव्वुर करना जरूरी नहीं। कुरा बस कोई गोल शक्ल हो जाए, वो किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन खारिज में जब होगी तो किसी मखसूस मादे की होगी वो चीज, लेकिन जहन में किसी मखसूस मादे का होना जरूरी नहीं है। मादे के बगैर भी आप उसका तसव्वुर कर सकते हैं गोल जिस्म। बात समझ में आ गई? तो हिकमत नजरिया की इस किस्म को इल्म रियाजी कहते हैं जिसमें उन चीजों के बारे में बहस होती है जो खारिज में तो मादे की मोहताज हैं लेकिन जहन में मादे की मोहताज नहीं हैं। बात अच्छी तरह समझ में आ गई? तो ये पांच चीजें गुजर गई, आज हम छठी चीज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए भाई आगे मतन देखिए, वसादिसु अन्नहु फी अय्य मर्तबतिन हुवा लियुकद्दम अला मा यजिबु वयुअख्खर अम्मा यजिब। रुउसे सामानिया में से छठी चीज भाई, छठी चीज ये बतलाई जाती थी कि अन्नहु फी अय्य मर्तबतिन हुआ, कि ये इलम किस मर्तबे का है, किस दर्जे का इलम है, लियुकद्दमा ताकि इसको मुकद्दम कर दिया जाए, अला मा यजिबू उन उलूम पर जिन पर इसको मुकद्दम करना वाजिब है, वयुअख्खरा और ताकि इसको मुअख्खर कर दिया जाए, अम्मा यजिबू उन उलूम से जिनसे मुअख्खर करना वाजिब है। छठी चीज भाई उन रुउस समानिया में से यह कि तालिब इल्म को यह बतलाया जाता था, या यूं कहें उस इल्म की इब्तिदा में यह बतलाया जाता था कि यह इल्म किस दर्जे का है, ताकि जो उलूम इस पर मुकद्दम करना वाजिब हैं उनको वो पहले हासिल करे और जिनको मुअख्खर करना वाजिब है उनको बाद में हासिल करे। तो कहते हैं वसादिसु अन्नहु फी अय्य मर्तबतिन हुआ, और छठी चीज ये है उनमें से कि ये इलम किस दर्जे का है, किस मर्तबे का है, لِيُقَدَّمَ عَلَى مَا يَجِبُ تاکہ مقدم کر دیا جائے اس علم کو عَلَى مَا يَجِبُ ان علوم پر جن پر اس کو مقدم کرنا ضروری ہے وَيُؤَخَّرَ اور تاکہ اس علم کو مؤخر کر دیا جائے عَمَّا يَجِبُ ان علوم سے جن سے مؤخر کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے مطابق طالب علم علوم کو حاصل کرے اس کو ترتیب کا علم ہو کہ یہ کس درجے کا علم ہے اگر اس کو مقدم کرنا ضروری ہے تو پہلے اس کو پہلے پڑھے اور اگر دوسرے علوم کو اس پر مقدم کرنا ضروری ہے تو پہلے دوسرے علوم کی تحصیل کرے والسابع القسمۃ والتبویب لیطلب فی کل باب ما یلیق به اور ساتویں چیز جو ہے ان رؤوس ثمانیہ میں سے وہ قسمت اور تبویب ہے قسمت کا معنی تقسیم بھائی یعنی تقسیم کرنا علم کو اور کتاب کو ابواب کے اعتبار سے علم کے بھی ابواب بنا دینا اس کی تقسیم کر دینا کتاب کے بھی ابواب بنا دینا تاکہ طالب علم کو پتا ہو کس باب کے اندر کون سا مسئلہ ذکر ہے تاکہ اس کو اگر وہ مسئلہ معلوم کرنا ہو تو اسی باب میں جا کر دیکھ لے بھائی السابع القسمۃ والتبویب ساتویں چیز جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے اور ابواب بنانا ہے لیطلب تاکہ طلب کیا جائے فی کل باب ان ہر باب میں ما اس چیز کو یلیق بہ جو اس کے مناسب ہو طالب علم کو جب پتا ہوگا کہ اس علم کے فلاں فلاں ابواب ہیں یا اس کتاب کے فلاں فلاں ابواب ہیں شروع میں اس کو بتلا دیا جائے گا تو پھر اس کو جس قسم کا مسئلہ دیکھنا ہوگا وہ اسی باب میں فوراً جا کر اس کو دیکھ سکے گا جی اب دیکھیے شرح میں قوله فی ای مرتبت ہوا کما یقال ان مرتبت المنطق ان یشتغل به بعد تہذیب الاخلاق و تقویم الفکر ببعض الہندسیات یاد رکھیے ہر زمانے کے اندر ابتدائی طلبہ کے لیے علوم کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے جو اس زمانے میں رائج ہوتی ہے جو اس زمانے کے ماہرین مناسب سمجھتے ہیں اس زمانے کے جو اہل علم حضرات ہیں ماہرین ہیں جو مناسب سمجھتے ہیں اس کے مطابق ایک خاص نہج سے ایک خاص ترتیب سے بچوں کو علوم پڑھائے جاتے ہیں جیسے آج کل دیکھو بھائی سکولوں میں ایک خاص ترتیب سے علوم بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں اسی طرح مدارس کے اندر بھی ابتدائی بچوں کو ایک خاص ترتیب سے علوم پڑھائے جاتے ہیں تو ہر زمانے کے اندر ابتدائی طلبہ کو تعلیم کے خاص طریقے خاص طرز اور خاص نہج ہوتے تھے جیسے کہ یہ بیان کرتے ہیں آپ کو بتلائیں گے کہ مصنف کے ہمارے زمانے میں بچوں کو ابتدائی تعلیم جو ہے وہ تہذیب الاخلاق کی دی جاتی تہذیب الاخلاق کے بعد پھر ان کو علم ہندسہ کی کچھ تعلیم دی جاتی تھی تاکہ طالب علم سوچنے سمجھنے کا عادی ہو جائے اس کو پتا چل جائے کہ کس طرح غور و فکر کر کے مسائل کو حل کرنا ہے تو سب سے پہلے کس کی تعلیم دی جاتی تھی تہذیب الاخلاق کی تعلیم دی جاتی تھی کہ کون سی عادتیں اچھی ہیں کون سی عادتیں بری ہیں کون سی خصلتیں اس کو نفع دینے والی ہیں کون سی خصلتیں اس کو نقصان دینے والی ہیں اور پھر اس کے بعد علم ہنسہ کی کچھ ابتدائی باتیں اس کو پڑھائی جاتی جس میں مختلف شکلیں ہوتی دائرے ہوتے مربع شکل ہوتی اور اسی طرح مستطیل شکل ہوتی مثلث ہوتی وغیرہ یہ چیزیں اس کو پڑھائی جاتی چنانچہ طالب علم جو ہے آہستہ آہستہ غور و فکر کا عادی ہوتا چلا جاتا اس کو پتا چلتا کہ کس طرح غور و فکر کر کے معاملات کو مسائل کو حل کرنا ہے اس کے بعد پھر اس کو منطق کی تعلیم دی جاتی تو سب سے پہلا درجہ کس کا تھا تہذیب الاخلاق کا دوسرا درجہ علم ہنسہ کی کچھ ابتدائی باتیں اور پھر تیسرا درجہ تھا علم منطق کا لیکن شارح آپ کو بتلائیں گے کہ استاذ محقق دوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر اب علم منطق سے پہلے کچھ علم ادب بھی طلباء کو پڑھانا چاہیے پہلے تہذیب الاخلاق اس کے بعد کچھ علم ہندسہ اور اس کے بعد کچھ عربی ادب کی تعلیم بھی طالب علم کو دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ تھوڑی عربی سیکھ جائے اس لیے کیونکہ کہتے ہیں اس زمانے کے اندر یہ جو منطق کی کتابیں ہیں یہ عربی زبان میں ان کی تدوین عام ہو گئی ہے عربی زبان میں لوگ منطق کی کتابیں لکھتے ہیں تو تمام منطق کی کتابیں عربی زبان میں ہیں اور اب بچوں کو یہ منطق پڑھائی جائے گی تو ضروری ہے کہ پہلے وہ ابتدائی عربی تھوڑی سی سیکھ لیں تاکہ ان کے لیے اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے بات سمجھ میں آ گئی دیکھیے بھائی قوله في أي مرتبة هو كما يقال, جیسے کہا جاتا ہے کہ ان مرتبة المنطقی, کہ منطق کا مرتبہ جو ہے, منطق کا درجہ جو ہے, ان يشتغل به, اس کو چاہے ان يشتغل به پڑھ لیں, چاہے ان يشتغل به پڑھ لیں. اگر پڑھیں اس کو ان يشتغل به تو یوں ترجمہ ہوگا, كما يقال ان مرتبة المنطق ان يشتغل به بعد تهذيب الاخلاق وتقويم الفكر ببعض الهندسيات, جیسے کہا جاتا ہے کہ منطق کا مرتبہ, منطق کا درجہ وہ یہ ہے کہ اس میں مشغول ہوا جائے تہذیب الاخلاق کے بعد, وتقويم الفكر ببعض الهندسيات, اور علم ہندسہ کی بعض چیزوں کے ذریعے فکر کو سیدھا کرنے کے بعد, تہذیب الاخلاق کے بعد اور علم ہندسہ کی بعض چیزوں کے ذریعے فکر کو سیدھا کرنے کے بعد, ان یشتغل به, علم منطق میں مشغول ہوا جائے, تو یہ ان یشتغل به بھی پڑھ سکتے ہیں, اور چاہیں تو اس کو ان یشتغل به پڑھ لیں, اور اس صورت میں ضمیر راجع ہوگی متعلم کی طرف, جو علم حاصل کرنے والا ہے, طالب علم ہے, جو مبتدی طالب علم. اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا, كما يقال ان مرتبة المنطق ان يشتغل به بعد تهذيب الاخلاق وتقويم الفكر ببعض الهندسيات, جیسے یوں کہا جائے کہ علم منطق کا مرتبہ جو ہے وہ یہ کہ مشغول ہو طالب علم اس کے اندر, بعد تهذيب الاخلاق, تهذيب الاخلاق کے بعد, وتقويم الفكر ببعض الهندسيات, اور علم ہندسہ کی بعض باتوں کے ذریعے فکر کو سیدھا کرنے کے بعد. ترجمہ سمجھ میں آ گیا, تقویم الفکر کا معنی ہے فکر کو سیدھا کرنا. مراد یہ ہے کہ ابتدائی طالب علم ہے, بچہ ہے, اس کو تہذیب الاخلاق پڑھایا گیا, اب اس کے بعد اس کو کچھ غور و فکر کا عادی بنایا جائے کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے غور و فکر کرنا پڑے گا, اور کس طرح اس کو حل کرنا ہے, تو یہ علم ہندسہ کے اندر شکلوں کی مدد سے اس کی خوب بہترین وضاحت ہو جاتی ہے. طالب علم جو ہے وہ غور و فکر کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے. تو تقویم الفکر کا کیا معنی؟ اس کے ذہن کو غور و فکر کا عادی بنانا. ویسے تقویم کا معنی سیدھا کرنا, تقویم الفکری, فکر کو سیدھا کرنا, یعنی اس کو غور و فکر کا عادی بنانا. وذکر الاستاذ, اور استاذ محقق دوانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے, فی بعض رسائلہ, اپنے بعض رسالوں کے اندر, کہ انہ ینبغی تاخیرہ فی زماننا ھذا, کہ مناسب یہ ہے تاخیرہ, منطق کو مؤخر کرنا, فی زماننا ھذا, ہمارے اس زمانے میں, عن تعلم قدر صالح من العلوم الادبیتی, قدر صالح, قدر موصوف ہے, صالح اس کی صفت, قدر صالح کا معنی ہے مناسب مقدار, مناسب یعنی طالب علم کو کچھ علم ادب کی بھی مناسب مقدار سیکھنی چاہیے, اس کے بعد منطق پڑھنی چاہیے, منطق کو اس سے مؤخر کرنا چاہیے. تو ذکر کیا ہے استاد نے, فی بعض رسائلہ, اپنے بعض رسالوں میں, انہ ینبغی تاخیرہ, کہ مناسب یہ ہے کہ منطق کو مؤخر کیا جائے, فی زماننا ھذا, ہمارے اس زمانے میں, عن تعلم قدر صالح من العلوم الادبیتی, علوم ادبیہ میں سے مناسب مقدار سیکھنے سے, علوم ادبیہ میں مناسب مقدار سیکھنے سے منطق کو مؤخر کیا جائے, یعنی اس کے بعد منطق کو سیکھا جائے, پہلے علوم ادبیہ میں سے مناسب مقدار سیکھ لی جائے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا کہ انہ ینبغی تاخیرہ فی زماننا ھذا, کہ مناسب یہ ہے کہ منطق کو مؤخر کیا جائے ہمارے اس زمانے میں, عن تعلم قدر صالح من العلوم الادبیتی, علوم ادبیہ میں سے مناسب مقدار سیکھنے سے, لما شاع, بوجہ اس چیز کے جو شایع ہو گئی ہے, جو رائج ہو گئی ہے, آج کل کے علماء میں جو چیز رائج ہو گئی ہے, بھئی کیا چیز رائج ہوئی ہے, ہمیں تو بات سمجھ میں نہیں آئی, بھئی تو آگے مین کے ذریعے بیان کریں گے. دیکھیں, من کون تداوین باللغت العربیتی, یعنی کہ کتابوں کو مدون کرنا عربی زبان میں, लिमा शाह बवजह उसके वो चीज जो शाया हो गई है, राइज हो गई है, यानी किताबों को अरबी जुबान में मुदवन करना। आजकल के जमाने में क्या बात राइज हो गई है कि उलमा अपनी किताबें अरबी जुबान में मुदवन करते हैं, तो इसलिए तालिब इलम को मंतिक से पहले अरबी अदब को भी सीख लेना चाहिए। कौलुहुल किस्मतु ऐ किस्मतुल इल्मी वल किताबी बिहसबी अबवाबिहा, मातिन का कौल अल किस्मत बई, ऐ किस्मतुल इल्मी वल किताबी बिहसबी अबवाबिहा, यानी इलम और किताब की तकसीम करना अबवाब के एतबार से। फल अव्वलु कमा युकालु, पस पहली चीज जो है जैसे यूं कहा जाए, यानी इलम को कैसे तकसीम करेंगे, अब उसकी मिसाल जिक्र करने लगे हैं। ये तकसीम इलम की मिसाल है। फल अव्वलु पहली जो है यानी किस्मत इलम, कमा युकालु जैसे कहा जाए, अबवाबुल मंतिक तिसअतुन, मंतिक के अबवाब नौ हैं। यह इलम की तकसीम है। आगे किताब की तकसीम कैसे की जाएगी वो भी आपको बताएंगे भाई। बात समझ में आ रही है? जैसे कहा जाए अबवाबुल मंतिक तिसअतुन, मंतिक के अबवाब नौ हैं। अल अव्वलु ईसा गोजी अल कुल्लियातुल खम्सु, पहला बाब जो है वो ईसा गोजी है। क्या माना? अल कुल्लियातुल खम्सु, यानी पांच कुल्लियात। आप पढ़ चुके हैं ईसा गोजी जो है ये यूनानी जुबान का लफ्ज है और इसका क्या माना है? कुल्लियात खम्स, ये इन्होंने माना बयान कर दिया। अल कुल्लियातुल खम्सु, ये माना बयान कर दिया ईसा गोजी का। पहला बाब ईसा गोजी है यानी कुल्लियात खम्सा। कौन सी कुल्लियात खम्सा? जिन्स, नौ, फसल, खासा और आरज आम भाई। असानी तारीफात, और दूसरा बाब है तारीफात भाई, जिसमें मुआरिफ के बारे में बतलाते हैं कि किसी चीज की तारीफ कैसे की जाती है। असालिसुल कजाया, तीसरा बाब जो है वो कजाया का है कि कजिया किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी किस्में हैं। अर्राबिउल कियास व अखवातुहु, और चौथा बाब जो है कियास और इसके अखवात जो हैं, यानी तमसील और इस्तिकरा भाई। अलखामिसुल बुरहानु, पांचवां बाब जो है वो बुरहान है। असादिसुल जदलु, छठा बाब जो है जदल है, कयास जदली भाई। असाबिउल खताबतु, सातवां बाब जो है वो खताबा है यानी कयास खताबी। असामिनुल मुगालततु, आठवां बाब जो है मुगालता है यानी कयास सफसती वगैरह भाई। अत्तासिउश शेरु, और नौवां बाब जो है वो शेर है यानी कयास शेरी। وَبَعْضُهُمْ عَدَّ بَحْثَ الْأَلْفَاظِ بَابًا آخَرَ فَصَارَ أَبْوَابُ الْمَنْطِقِ عَشَرَةً كَامِلَةً, और बाज उलमा ने शुमार किया है, अद्दा शुमार करना, और बाज मनातिका ने अद्दा शुमार किया है बहसल الْأَلْفَاظِ, अल्फाज की बहस को, बाबन आखरा अलहदा बाब, अलग बाब। बाज मनातिका ने अल्फाज की बहस को अलग बाब शुमार किया है भाई। जैसे वो शुरू में बहस आई थी कि दलालत किसे कहते हैं, और दलालत या लफ्जिया होगी या गैर लफ्जिया, फिर इन दोनों में से हर एक वो तीन तीन किस्म पर है, या वज़ईया होगी या अकलिया होगी या तबईया होगी भाई। तो ये वो जो अल्फाज की बहस करते हैं उसको बाजों ने अलहदा बाब शुमार किया, तो कुल कितने बाब हो गए? दस हो गए। तो कहते हैं वबाज़ुहुम अद्दा बहसल अल्फाज बाबन आखरा, और बाज मनातिका ने अल्फाज की बहस को अलहदा बाब शुमार किया है। फसारा अबवाबुल मंतिक अशरतन कामिलतन, तो मंतिक के अबवाब पूरे दस हो गए। वसानी कमा युकालू, और दूसरी किस्म, दूसरी बात आ गई। पहला क्या था? किस्मतुल इलम, अब किस्मतुल किताब की, किताब की भी तकसीम की जाए, उसमें भी अबवाब बनाए जाए। वह दूसरी किस्मतुल किताब जो है कमायु कालू के जैसे कहा जाए, इन किताबना हादा। देखो इस किताब के अंदर, जैसे इस किताब के अंदर शुरू में इन्होंने आपको बतलाया था कि इस किताब की दो किस्में हैं, एक किस्म अव्वल मंतिक के बारे में है और किस्म सानी इल्म कलाम के बारे में है। तहजीबुल मंतिक वल कलाम भाई, जहन में बात आ गई। और फिर इल्म मंतिक जो है उसके अंदर एक मुकदमा है, एक मकसद अव्वल है जिसमें तसव्वुरात की बहस होगी, फिर एक दूसरा मकसद है जिसमें तस्दीकात की बहस होगी, और फिर उसके बाद खातिमा। उसके बाद भाई ये जिक्र तो नहीं किया किताब के शुरू में, लेकिन अगर जिक्र करते तो देखा इस अंदाज में जिक्र करते। وسانی کما یقالو، اور دوسری قسمت الکتاب جو ہے کما یقالو جیسے کہ کہا جائے، ان کتابنا ھذا مرتب علی قسمین، کہ ہماری یہ کتاب مرتب ہے دو قسموں پر، القسم الاول فی المنطق، پہلی قسم منطق کے بارے میں ہے، وہو مرتب علی مقدمت و مقصدین و خاتمت، اور وہ مرتب ہے ایک مقدمہ، دو مقصد اور ایک خاتمے پر، المقدمت فی بیان الماہیت والغایت والموضوعی، مقدمہ جو ہے وہ اس علم کی ماہیت، اس کے غایہ اور اس کے موضوع کے بیان میں ہے، اس علم کی ماہیت یعنی اس کی تعریف کیا ہے، اس علم کی غایت یعنی اس علم کا مقصد کیا ہے، اور اس علم کا موضوع کیا ہے، والمقصد الاول فی مباحث التصورات، اور پہلا مقصد جو ہے وہ تصورات کے مباحث میں ہے، والمقصد الثانی فی مباحث التصدیقات، اور دوسرا مقصد جو ہے وہ تصدیقات کی مباحث میں ہے، والخاتمۃ فی اجزاء العلوم، اور خاتمہ جو ہے علوم کے اجزاء کے بارے میں ہے، القسم الثانی فی علم الکلام، اور اس کتاب کی قسم ثانی جو ہے وہ علم کلام کے بارے میں ہے، میں نے بتلایا تھا علم کلام وہ علم جس میں عقیدے کی بحث ہوتی ہے، وہ مرتب علی کذا ابواب، اور وہ مرتب ہے اتنے ابواب پر، اتنے ذکر نہیں کیا کتنے ابواب، ویسے ہی مثال کے طور پر ذکر کر دیا کہ وہ مرتب علی کذا ابواب، اور وہ مرتب ہے اتنے ابواب پر، الاول فی کذا، اور ان میں پہلا باب ایسا ہے، کما قال فی الشمسیتی، جیسا کہ رسالہ شمسیہ کے مصنف جو ہیں، یعنی جو قطبی کا متن ہے اس کے مصنف فرماتے ہیں، ورتبتہ علی مقدمت و ثلاث مقالات و خاتمت، کہ میں نے اپنی اس کتاب کو مرتب کیا ہے ایک مقدمے پر اور تین مقالات پر اور ایک خاتمے پر، وَهَذَا الثَّانِي شَائِعٌ كَثِيرٌ، اور یہ جو دوسری قسم ہے یہ بہت زیادہ رائج ہے، بہت زیادہ یعنی رائج، کون سی دوسری قسم، ایک تھی قسمت العلم اور ایک ہے قسمت الکتاب، یہ جو کتاب کے اندر شروع کے اندر بتاتے ہیں میری کتاب میں ایک مقدمہ ہوگا، اتنے باب ہوں گے اور آگے پھر ایک خاتمہ ہوگا، یہ بہت زیادہ رائج ہیں، یہ کتابوں میں مصنف بتلاتے ہیں، تو وَهَذَا الثَّانِي شَائِعٌ كَثِيرٌ، تو یہ جو قسمت الکتاب ہے یہ کثیر شائع ہے، رائج ہے، فلا یخلو عنہ کتاب، تو کوئی کتاب اس سے خالی نہیں، ہر کتاب والا اس کو ذکر کرتا ہے، بھئی یہ کتاب کے شروع میں ہی بتلا دیا جاتا ہے اس کتاب میں مثلا یہ یہ چیزیں ہوں گی، ایک مقدمہ ہوگا اور اتنے مقاصد ہوں گے اور اتنے ایک خاتمہ ہوگا وغیرہ، ہر مصنف کا اپنا طریقہ ہے تاکہ طالب علم کو کتاب کے آغاز سے ہی پتا چل جائے کہ کون کون سی بحثیں آئیں گی اور کس کس باب میں آئیں گی، تاکہ اگر کسی نے کوئی بحث تلاش کرنی ہو تو وہ اسی حصے میں جا کر اس بحث کو دیکھ لے گا، بلکہ اب جدید طریقہ آ گیا، اب ہر کتاب کے شروع میں یا آخر میں مکمل عنوانات کی فہرست دی جاتی ہے، پہلے یہ طریقہ نہیں تھا، اب پوری کتاب کی فہرست دی جاتی ہے، تو فہرست سے بھی اب انسان کو کوئی چیز تلاش کرنا ہو دیکھنا ہو اس کتاب میں وہ فہرست سے دیکھتا ہے، اور بلکہ وہاں تو اب صفحہ نمبر بھی دیے ہوتے ہیں کہ فلاں صفحے پر یہ بحث ہے، تو وہ آسانی سے اس بحث کو تلاش کر لیتا ہے، تو پرانا طریقہ کیا تھا، کتاب کے شروع میں مصنف ذکر کرتا تھا کہ اتنے اتنے باب ہیں، یہ یہ چیزیں ہر باب میں ذکر ہوں گی، اور اس طرح بحث تلاش کرنے میں آسانی ہوتی تھی، اور اب اس کے ساتھ ایک اور مزید چیز آ گئی کہ کتاب کی فہرست بھی کتاب کے ساتھ درج کی جاتی ہے، بھائی آگے متن دیکھیے بھائی، والثامن الانحاء التعلیمیہ وہی تقسیم عن التکثیر من فوق والتحلیل عکسہ، رؤوس سمانیہ میں سے آٹھویں چیز آ گئی بھائی، تو کہتے ہیں والثامن الانحاء التعلیمیہ، تعلیمی طریقے، آٹھویں چیز کیا ہے، تعلیمی طریقے، انحاء جمع ہے نحو کی، اور نحو کا ایک معنی آتا ہے طریقہ، طریقہ طرز، تو یہ یہاں طریقے کے معنی میں ہے، الانحاء التعلیمیہ تعلیمی طریقے، تعلیمی طریقے، تو کہتے ہیں والثامن الانحاء التعلیمیہ، اور آٹھویں چیز رؤوس سمانیہ میں سے وہ تعلیمی طریقے ہیں، بھئی وہ کیا طریقے، کہتے ہیں وہی تقسیم، یاد رکھو تعلیمی طریقے یہ چار چیزیں ہیں، चार चीजें देखो मतन के अंदर इनका जिक्र आ रहा है। नंबर एक है तकसीम, नंबर दो है तहलील, नंबर तीन है तहदीद और नंबर चार है बुरहान। मिल गया मतन में? तकसीम, तहलील, तहदीद और बुरहान, ये हैं अनहाय तालीमिया, तालीमी तरीके। चार चीजें हैं भाई, कौन कौन सी चार चीजें फिर दोहरा लें। नंबर एक तकसीम, नंबर दो तहलील, नंबर तीन तहदीद और नंबर चार बुरहान। भाई तो कहते हैं वही है तकसीम आनी तकसीर अमिन फौकिन, और वो तकसीम है आनी तकसीर अमिन फौकिन यानी कसरत करना यानी ज्यादा करना, ज्यादा करना मिन फौकिन ऊपर की जानिब से। वह तहलील अक्सुहू, और तहलील इसका बरअक्स है भाई, तहलील इसका बरअक्स है भाई। तो कहते हैं आनी तकसीर मिन फौकिन। भाई याद रखिए ये कबलो बादो फौको तहतो वगैरह ये मुजाफिले चाहते हैं। फौक का माना ऊपर, भाई किसके ऊपर मुजाफिले चाहिए भाई? दरख्त के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, छत के ऊपर, तो आगे मुजाफिले चाहिए। और फिर कभी कभार क्या कर लिया जाता है, इसके मुजाफिले को हजफ कर लेते हैं। अच्छा तो इनका मुजाफिले कभी इबारत में जिक्र होता है और कभी हजफ होता है। अगर इबारत में जिक्र हो तो इनकी जरूरत पूरी हो गई, लिहाजा ये मौरब ही रहेंगे। और अगर इनके मुजाफिले को हजफ कर लिया जाए तो फिर वो नीयत में मुराद होगा या मुराद नहीं होगा। अगर नीयत में मुराद है, इरादा उसका है, लेकिन लफ्जों से हजफ कर लिया तो उसका नुकसान हो गया। एक चीज मुराद है और लफ्जों से आपने खत्म कर दी तो आपने इसका क्या कर दिया, नुकसान। तो इस सूरत में ये मबनी अला जम होगा, मबनी अला जम। और अगर नीयत से भी उड़ा दिया तो इस सूरत में नीयत में भी नहीं है, लफ्जों में भी नहीं है, गोया यहां किसी किस्म का नुकसान हुआ ही नहीं, इरादा ही नहीं है जब एक चीज का तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ। जब नुकसान नहीं हुआ तो यह लफ्ज उसी तरह मौरब रहेगा। बात समझ में आ गए? तो यहां पर भी इसी तरह है मिन फौकिन, यहां मुजाफिले लफ्जों में भी नहीं और नीयत में भी नहीं, किस चीज के ऊपर यहां मुराद ही नहीं है, बस मिन फौकिन। देखा यह मौरब है, इसीलिए मौरब है। अगर मसलन जैद मुराद होता मिन फौक जैदिन और जैद तो हजफ कर देते आप इबारत से तो नुकसान हो जाता, नीयत है और लफ्जों में नहीं है। जैसे मिसाल देखो, मिसाल से बात समझ में आ जाएगी। मसलन मैं आपको कहता हूं जा अनी जैदुन, मसलन कबलू और बादू की मिसाल ले लो, उसकी भी वो भी इसी तरह है। जा अनी जैदुन कबल अमरिन, जैद अमर से पहले आया। कबल अमरिन, ये कबल क्या है, मफूल फी है, पहले या बाद में होना जमाने के एतबार से है ना, और जमाना क्या बनता है, मफूल फी। जा अज़ैदुन कबला अमरिन, तो अब कबल की जरूरत पूरी हो रही है, इसके लिए मुजाफिले चाहिए था, वो लफ्जों में जिक्र है, लिहाजा ये मुआरब है और मफूल फी है, और मफूल फी पर कौन सा इराब आता है, नसब, लिहाजा इस पर नसब हम पढ़ रहे हैं। जा अज़ैदुन कबला अमरिन, और फिर कभी हम यूं करते हैं अमर को लफ्जों से उड़ा देते हैं, लेकिन नीयत में होता है, नीयत में है, लफ्जों से उड़ा दिया तो फिर इस सूरत में ये इसका नुकसान हो गया नीयत में। यह यूं कहो, पहले दूसरी मिसाल बना लो, या दूसरी सूरत यह है कि हम लफ्जों से भी उड़ा देते हैं, नीयत से भी उड़ा देते हैं, तो इस सूरत में, इस सूरत में भी यह मौरब रहेगा। जानी जैदुन कबलन, पहले तो तनवीन नहीं थी क्योंकि मुजाफिले था आगे, अब मुजाफिले नहीं है तो तनवीन आ गई, और नीज ये मफूल फी है और मफूल फी क्या होता है, मंसूब, इसलिए हम इस पर नसब पढ़ रहे हैं। और इसका मुजाफिले लफ्जों में भी नहीं है और नीयत में भी नहीं है, तर्जमा क्या होगा, जा अज़ैदुन कबलन, जैद पहले आया, बस किससे पहले आया, नहीं नहीं यहां मुराद नहीं है। अगर किसी से पहले मुराद है फिर तो मालूम है मुजाफिले आपने हजफ किया हुआ है, कोई मुराद नहीं है किससे पहले आया, बस जैद पहले आया, जा अज़ैदुन कबलन। और अगर लफ्जों से आपने अमर को उड़ाया और नीयत में अलबत्ता मौजूद है अभी भी, अभी भी और तर्जमा आप क्या कर रहे हैं, जा अजैदन कबलो, इस सूरत में मबनी हो जाएगा। तर्जमा क्या, जा अजैदन कबलो, क्या तर्जमा, दाने पहले नहीं, वो अमर भी मुराद है, अमर भी मुराद है, जा अजैदन कबलो, जैद अमर से पहले आया, देखा नियत में अभी भी है लेकिन लफ्जों में आपने उड़ा दिया। जब लफ्जों से उड़ाया तो कबल का नुकसान हो गया, जब कबल का नुकसान हुआ इसका मुजाफिले आपने खत्म किया है तो इसको आप मबनी अल जम बना देंगे, तो जाअनी जैदन कबलो, क्या तर्जमा, जैद अमर से पहले आया, देखा नियत में है अभी भी भाई, अमर से पहले मुराद है, बाकी चीजों से पहले मुराद नहीं। तो तर्जमा करें, जा अजैदन कबलो, जैद अमर से पहले आया, और जा अजैदन कबलन, जैद पहले आया, लफ्जों से भी उड़ा दिया और नियत से भी। यहां पर भी इसी तरह है, मिन फौकिन, लफ्जों से भी उड़ा दिया और नियत से भी, अगर नियत में होता तो मिन फौकु हम पढ़ते हैं, मिन फौकु, यहां सिर्फ ऊपर के माना में है, आनी तकसीर मिन फौकिन, यानी के ज्यादा करना, यानी मुकद्दिमात को ज्यादा करना, मिन फौकिन ऊपर से, मुकद्दिमात को ज्यादा करना ऊपर से, यानी ऊपर की जानिब से, व तहलील अक्सुहु, और तहलील इसका बरअक्स है भाई, माना समझ में आ गया। आठवीं चीज है तालीमी तरीके, और वो क्या है, वो चार चीजें हैं, तकसीम, तहलील, तहदीद और बुरहान, उसमें से ये दो चीजों का जिक्र आ गया, एक तकसीम और एक तहलील। तकसीम किसका नाम है, अत-तकसीरु मिन फौकिन, ऊपर की तरफ से मुकद्दिमात ज्यादा करना, तवज्जो है, ऊपर की तरफ से मुकद्दिमात ज्यादा करना, और तहलील इसका बरअक्स है, यानी ऊपर की तरफ को मुकद्दिमात ज्यादा करना। तकसीम है मिन फौकिन और तहलील है इला फौकिन, तवज्जो है, मिन फौकिन ऊपर से, यानी ऊपर की तरफ से नीचे को मुकद्दिमात ज्यादा करना, और तहलील क्या है, इला फौकिन ऊपर की तरफ मुकद्दिमात को ज्यादा करना। बात समझ में आ गई, अब देखिए शरा में, कौलुहु अल अनहा उत्तालीमियतु अयतुरुकुल मस्कूरतु फित तालीमी, देखा अनहा का माना मैंने क्या किया था, तरीका, वही बयान कर रहे हैं, अयतुरुकुल मस्कूरतु फित तालीमी, यानी वो तरीके जो मस्कूर हैं तालीम के अंदर, लिउमूमी नफ़ईहा फिल उलूमी, बवजह इसके कि इनका नफा आम होता है तमाम उलूम में, यानी तालीमी तरीके आठवीं चीज वो मुसन्निफ जिक्र करते थे, इसलिए क्योंकि जो तालीमी तरीके हैं ये तमाम उलूम में नफा देते हैं, तालीमी तरीके ये तकसीम, तहलील, तहदीद और बुरहान, ये तमाम उलूम में फायदा देते हैं, इसलिए आठवें दर्जे में फिर इसको भी साथ जिक्र करते थे। वकद इस्तरबत कलिमतु शुर्राहिहा हुना, अच्छा भाई ये तकसीम तहलील इनका क्या माना है, क्या कहना चाहते हैं, अत तकसीरु मिन फौकिन, ऊपर की तरफ से मुकद्दिमा ज्यादा करना, तो शारहीन ने मुख्तलिफ तकारीर की हैं इस मकाम की, अत तकसीरु मिन फौकिन की शारहीन ने मुख्तलिफ तकरीरें की हैं, यहां पर शारह आपको बतलाएंगे कि शारहीन का कलाम यहां पर मुख्तलिफ है, किसी शरा करने वाले ने कोई तकरीर की है, किसी शरा करने वाले ने कोई तकरीर की है, लेकिन जो यहां मैं तकरीर कर रहा हूं वो दुरुस्त तकरीर है भाई। तो कहते हैं वकद इस्तरबत कलिमतु शुर्राहिहा हुना, और मुस्तरिब हैं कलिमतु शुर्राही, शारहीन के कलिमे, हा हुना यहां पर, यानी शरा करने वालों के अल्फाज यहां पर मुस्तरिब हैं, उनमें इस्तेराब है, किसी ने एक अंदाज में इसको बयान किया है, किसी ने दूसरे अंदाज में मुख्तलिफ किस्म की बातें जिक्र की गई हैं। तो कहते हैं वकद इस्तरबत कलिमतु शुर्राही हा हुना, शरा करने वालों के अल्फाज यहां पर मुख्तलिफ हैं, व मा नस्बुर, और वो जो हम जिक्र करेंगे, हुवल मुआफिक लितत्तबुई कुतुबिल कौमी, वही मुआफिक है कुतुब कौम के तत्तबुअ के, तो कुतुब कौम का तत्तबुअ करें, यानी कौम से मुराद मंतिकी मुराद है और फलसफी, मनातिका और फलासफा के किताबों का आप तत्तबुअ करें, जस्तुजू करें, तहकीक करें, तो वो आपको हमारी तकरीर के मुआफिक मिलेगा। हमारी तकरीर उन किताबों से के जो तत्वों किया जाए उसके मुआफिक है। बात समझ में आ गई? उन किताबों की जो तहकीक की जाए। तो कहते हैं वह मानस कुरु, और वो जिसको हम जिक्र करेंगे हुअल मुआफिक, वही मुआफिक है, मुताबिक है, लि तत्वी कुतुबिल कौमी मनातिका और फलासफा की किताबों की तहकीक के, उसके मुताबिक है हमारा ये वो जो हम जिक्र करेंगे। वल माखूजू, माखूज का आतफ है मुआफिक पर, आई वमा नज़कुरु हुवल माखूजू, और वो जो हम जिक्र करेंगे वो ही है जो अखज किया गया है मिन शरहिल मताले, शरहे मताले, शरहे मताले जो कुतुबुद्दीन राजी की मशहूर किताब है, जो हम जिक्र करेंगे वो उसके मुआफिक है। भाई जो हम जिक्र करेंगे, मैंने बतलाया शारखीन ने यहां मुख्तलिफ तकरीरें की हैं कि यह तकसीर मिन फौकिन का क्या माना है। कहते हैं हम जो जिक्र करेंगे, अगर आप मनातिका और फलासफा की किताबों की तहकीक कर लें तो हमारा यह कलाम आपको उसके मुआफिक मिलेगा, और अगर आप शरह मताले को देख लें तो हमारा कलाम उसके भी मुआफिक होगा। माना समझ में आ गया? तो कहते हैं वमा नज़कुरु हुवल मुआफिकु लितत्तबुउ कुतुबिल कौमी वल माखूज़ु मिन शरहिल मताले, और वो जो हम जिक्र करेंगे वो मुआफिक है मनातिका की किताबों की तहकीक के, और वो माखूज है मिन शरहिल मताले, शरह मताले से। कौलुहू वहियत तकसीमु, मातिन का कौल वहियत तकसीम। का अन्नल मुराद बिही मायुसम्मा तरकीबल कियासी ऐज़न, गोया के मातिन की मुराद इससे वो चीज है युसम्मा तरकीबुल कियासी ऐज़न, जिसको तरकीबुल कियास भी कहते हैं। बतलाना ये चाहते हैं कि मातिन ने तकसीम को जिक्र किया और उसका माना किसके साथ किया, आनी तकसीर मिन फौकिन। मालूम हुआ मातिन की तकसीम से वही मुराद है जिसको तरकीबुल कियास भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? जिसको मनातिका और फलासफा तरकीबुल कियास कहते हैं, मालूम हुआ मातिन का वो ही इरादा है। तरकीबुल कियास यानी कियास को तरकीब देना, कियास बनाना, तवज्जो है, कियास बनाना। यहां एक दो बातें लिख लें भाई, एक दो बातें लिख लें जी। ऊपर उनवान दीजिए अत तकसीम, अत तकसीम यह उनवान है अत तकसीम। आगे बैनल कौसैन इसके आगे लिख दें यानी तरकीबुल कियास, यानी तरकीबुल कियास। नीचे लिखिए तकसीम का माना यह है, तकसीम का माना यह है कि मतलूब तस्दीकी, कि मतलूब तस्दीकी यानी नतीजे की तहसील के लिए, यानी नतीजे की तहसील के लिए, तहसील सौद से है, यानी नतीजे की तहसील के लिए कियास के मुकद्दमात को, कियास के मुकद्दमात को तरतीब देना, तरतीब देना। इसका तरीका यह है, इसका तरीका यह है कि मतलूब तस्दीकी, कि मतलूब तस्दीकी यानी नतीजे की तरफ से, यानी नतीजे की तरफ से बहुत से मुकद्दमात बनाना, बहुत से मुकद्दमात बनाना ताकि उस कियास का पता चलाया जाए, ताकि उस कियास का पता चलाया जाए जो इस नतीजे का मुंतिज है, जो इस नतीजे का मुंतिज है, और फिर उस कियास के जरिए, और फिर उस कियास के जरिए मतलूबा नतीजा हासिल किया जाए, और फिर उस कियास के जरिए मतलूबा नतीजा हासिल किया जाए। बात समझ में आ रही है? पहले इसको समझ लें। इधर देखिए, यह है तकसीम भाई, तकसीम। तकसीम यानी तरकीबुल कियास। देखो लफ्जों से ही पता चल रहा है, तरकीबुल कियास, कियास को तरकीब देना, कियास को जोड़ना, मुख्तलिफ मुकदमात को तरतीब देकर जोड़कर कियास बनाना, ताकि हम उस नतीजे तक पहुंच जाए जो हमारा मतलूब है, हमारा मकसूद है और जो हमारा दावा है भाई। और इसका तरीका याद रखो भाई, तरीका यह भी आगे बयान करेंगे, अभी से इसको समझ लें। अच्छा तो देखो यहां दो चीजें हैं, इधर देखिए, एक है दलील, एक है नतीजा। एक है दलील और एक है नतीजा। याद रखो नतीजे का दर्जा आला है, नतीजे का दर्जा आला है, क्योंकि दलील जो जिक्र की जाती है वो किस लिए दी जाती है? नतीजे तक पहुंचने के लिए। तो दलील है वसीला और जो नतीजा है वो है मतलूब और मकसूद भाई। तो नतीजे का मकाम और दर्जा आला है। तो अब मुझे बताइए, कियास का दर्जा ऊंचा या नतीजे का दर्जा ऊंचा? नतीजे का दर्जा ऊंचा है। तो अब नतीजा हुआ ऊपर, अब ऊपर जो नतीजा है इससे आगे नीचे की तरफ हम चलते हैं और बहुत सारे मुकदमात बनाते हैं ताकि वो कियास हासिल कर लें जिससे फिर ये वाला नतीजा आ जाए। नतीजा हमारे पास है लेकिन नीचे दलील नहीं है। और नतीजे का दर्जा आला है या कियास का दर्जा आला? नतीजे का दर्जा आला है। तो नतीजा हुआ ऊपर, नतीजा क्या हुआ? तो ये माना है अत्तकसीरु मिन फौकिन, ऊपर की तरफ से, यानी नतीजे की तरफ से नीचे की तरफ आना, किसकी तरफ? कियास की तरफ। नतीजे की तरफ से किसकी तरफ आना? कियास की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना। और तहलील में इसका बराक्स होगा, नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे, यानी इला फौकिन, इला मुकदमात के जरिए हम कहां तक पहुंचेंगे? नतीजे तक। और यहां नतीजे के जरिए हम किस तक पहुंच रहे हैं? कियास तक भाई। तो ये अत्तकसीर मिन फौकिन क्या माना? ऊपर से यानी नतीजे की तरफ से नीचे आना और मुकदमात ज्यादा बनाना। और तहलील का क्या माना? हां, ऊपर की तरफ जाना, इला फौकिन, यानी मुकदमात के जरिए, कियास के जरिए कहां तक पहुंचना? नतीजे तक पहुंचना भाई। ये दो तरीके हैं। आगे मिसाल भी लिख लीजिए भाई, मिसाल, बल्कि पहले इसको समझ लें। इधर देखिए, पहले समझ लें, तकसीर यह है कि नतीजे से हम कियास की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। नतीजा हमारे पास है, उस तक हम पहुंचना चाहते हैं, वो हमारा मतलूब है, वो हमारा मकसूद है, लेकिन बगैर दलील के तो नतीजा कोई नहीं तस्लीम करेगा। तो हमें उसके साथ क्या चाहिए? कियास भी चाहिए, दलील भी चाहिए भाई। तो लिहाजा नतीजा, नतीजे के अंदर एक मौजू होगा और एक महमूल होगा, एक मौजू होगा और एक महमूल होगा। अब यूं कर लो, मौजू और महमूल को अलग अलग कर लो, फिर यह मौजू लो जो नतीजे का मौजू है, ये जो नतीजे का मौजू, इसको कहते हैं असगर, और नतीजे का जो महमूल है उसको क्या कहते हैं? अकबर। तो हमने असगर ले लिया, और इस असगर के जरिए बहुत सारे मुकदमात बनाओ, इस असगर के जरिए बहुत सारे मुकदमात बनाओ जो जो मुनासिबत रखते हो उस नतीजे के साथ। तो बहुत से मुकदमात बना लो, फिर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कौन सा मुनासिब है कौन सा नहीं। किससे मुकदमात बना रहे हो? असगर से। असगर क्या है? नतीजे का मौजू है, तवज्जो है, नतीजा हमारे पास है, हमने नीचे कियास बनाना है। तो नतीजे का मौजू और महमूल अलग अलग कर लो। नतीजे के मौजू का क्या नाम? असगर। महमूल का क्या नाम? अकबर। अब असगर को लो और असगर की मदद से बहुत से मुकदमात बनाओ, यानी पहले मुकदमात वो बनाओ जिनमें असगर को मौजू बनाओ और आगे साथ महमूल जोड़ते चले जाओ। मसलन हमारे पास नतीजा है अल इंसानु हैवानुन, तवज्जो है, अल इंसानु हैवानुन, ये नतीजा है, लेकिन इसके लिए हमें कियास चाहिए, फिर ही लोग इसको तस्लीम करेंगे, वैसे तस्लीम नहीं करेंगे। तो इसमें मौजू क्या? अल इंसान, और महमूल क्या? हैवान। तो अल इंसान हुआ असगर और हैवान क्या हुआ? अकबर। ये जो असगर है इसके बहुत सारे मुकदमात बना लो। किस तरह बनाने मुकदमात? इसी को मौजू बना लो और इसके साथ महमूल जोड़ो, तवज्जो है, इसको क्या बनाओ? मौजू, और इसके साथ क्या जोड़ो? महमूल जोड़ दो। दूसरी सूरत, इसको महमूल बनाओ असगर को और इसके साथ बहुत सारे मौजू जोड़ो। जो मुकदमात आपको मिलते जाए सारे जमा करते जाओ। मसलन असगर क्या था? अल इंसान, तो अल इंसान के साथ महमूल जोड़ते जाओ, अल इंसानु कातिबुन, जो भी मिलता जाए महमूल जोड़ते जाओ, अल इंसानु कातिबुन, अल इंसानु मुतहरिक बिल इरादा, अल इंसानु हसासुन, अल इंसानु जाहिकुन, अल इंसानु नातिकुन। ये बहुत सारे मुकदमे जिनमें हमने क्या बनाया, असगर को मौजू और महमूलात साथ जोड़ते गए। दूसरी सूरत, अब असगर को महमूल बनाओ और इसके साथ मौजूआत जोड़ते जाओ। मसलन जैदुन इंसानुन, बकरुन इंसानुन, खालिदुन इंसानुन, कातिबुन इंसानुन, कुल्लु जाहिकिन इंसानुन, कुल्लु नातिकिन इंसानुन। देखा, सब में मैंने इंसान को क्या बनाया, महमूल। तो इस तरह बहुत से मुकदमे बना लो, असगर से भी उन मुकदमात में बाद में असगर को क्या बनाओ, मौजू, बाद में असगर को क्या बनाओ, महमूल बनाओ। फिर ये जो मुकदमे आपने बनाए, मुजीबा भी बनाओ, सालिबा भी बनाओ, जो भी मिलते जाए जोड़ते जाओ। मसलन सालिबा बना लो, लाशई अमिन अल इंसानी भी हजरिन, देखा इंसान मौजू है और हजर महमूल, और लाशई अमिन अल इंसानी भी हजरिन, कोई इंसान हजर नहीं है। या वो सालिबा बनाओ जिसमें यह महमूल हो, लाशई अमिन अल हजरी भी इंसानी। तो देखा, मुजीबा भी मुकदमा बनाओ, मुकदमे बनाओ, और सालिबा भी बनाओ, और असगर को मौजू भी बनाओ और महमूल भी। इसी तरह अकबर जो था, अकबर में भी इसी तरह करो। अकबर क्या था? हैवान। उस हैवान को मौजू बनाओ और इसके साथ महमूलात को जोड़ दो ताकि बहुत सारे मुकदमे बन जाए। और फिर या इस अकबर को क्या बनाओ, महमूल बनाओ, और इसके लिए बहुत सारे मौजूआत साथ जोड़ते जाओ और मुकदमे बनाते चले जाओ। मुजीबा भी बना लो और सालिबा भी बना लो। फिर उसके बाद जब ये सारे मुकदमे आपके पास आ गए, अब इन दोनों के अंदर गौर करो। इन मुकदमात में एक किस्म के वो मुकदमात जिनमें असगर है, एक किस्म के वो मुकदमात जिनमें अकबर है, इनमें देखो कि शक्ल अव्वल या सानी या सालिस या राबिया तो नहीं बन रही। मसलन असगर वाले मुकदमात में एक मुकदमा हमें मिला कि जिसमें असगर मौजू है और उसका एक महमूल भी है साथ, और अकबर के अंदर वही महमूल अकबर के लिए मौजू बन रहा है। शक्ल अव्वल सानी सालिस राबे याद है? शक्ल अव्वल में असगर मौजू होता था कयास के अंदर, सुगरा के अंदर असगर क्या होता था, और कुबरा के अंदर अकबर क्या होता था, महमूल होता था। तो अगर इस जैसी कोई दो मुकदमे हमें मिल जाएं, एक मुकदमे में असगर मौजू है और उसके साथ आगे कोई महमूल है, और वही महमूल जो है वो अकबर वाले मुकदमात में एक जगह मौजू बना हुआ है और अकबर खुद क्या है उसके लिए, महमूल है, तो मालूम हुआ ये शक्ल अव्वल हमें हासिल हो गई। अब इन दोनों मुकदमों को निकाल लो, ये आपका कयास तैयार हो गया। बात समझ में आ गई अच्छी तरह? अब इसकी एक मिसाल भी हम कर लेते हैं। लिखिए भाई, लिखिए भाई, तकसीम की मिसाल, तकसीम की मिसाल। मसलन हमारा मतलूब तस्दीकी यानी नतीजा है, मसलन हमारा मतलूब तस्दीकी यानी नतीजा है, कुल्लु इंसानिन जौहरुन, कुल्लु इंसानिन जौहरुन। तवज्जो है, ये हमारे पास नतीजा है और हमें इसके लिए कयास चाहिए। तो इसके मौजू और महमूल क्या क्या हैं? मौजू क्या? इंसान। महमूल क्या? जौहर। तो इंसान के अलग मुकदमात हम बना लेंगे जिसमें किसी में इंसान को मौजू बनाना है, किसी में इंसान को महमूल बनाना है, कोई मुजीबा बनाना है, कोई सालिबा, सारे मुकदमात इकट्ठे कर लो। उसके बाद जो जौहर है, जो महमूल है, इसको भी इसी तरह मुख्तलिफ मुकदमात इसके बना लो। किसी में इस जौहर को मौजू बनाओ, किसी में इसको महमूल बनाओ, कोई मुजीबा मिले मुजीबा लिख लो, सालिबा मिले तो सालिबा लिख लो, और फिर उनके जरिए कयास बनाओ। मसलन देखो भाई, मसलन देखो, मौजू क्या? इंसान। अब हम इस इंसान से बहुत से मुकदमे बनाते हैं। लिखिए मसलन, ऊपर लिख लें अल इंसान, अल इंसान यानी असगर भी लिख लें, यानी असगर से हासिल होने वाले मुकदमे से हासिल होने वाले मुकदमे, अल इंसान यानी असगर से हासिल होने वाले मुकदमे। बतौर मिसाल है भाई, बात समझ में आ रही है, लिखिए भाई, कुल्लो इंसान इन हैवान उन, कुल्लो इंसान इन हैवान उन, कुल्लो इंसान इन जिस्म उन, कुल्लो इंसान इन जिस्म उन, कुल्लो इंसान इन मुमकिन उन, कुल्लो इंसान इन मुमकिन उन, लाशय अमीनल इंसानी बि हजरिन, लाशय अमीनल इंसानी बि हजरिन, लाशय अमीनल इंसानी बि हजरिन, बाजुल इंसानी लैसा बि शजरिन, बाजुल इंसानी लैसा बि शजरिन। लिख लिया, देखो ये हमने मुकदमात जमा किए जिनमें इंसान को यानी असगर को मौजू बनाया और इसके बारे में मुकदमात इकट्ठे किए, मूजिबा भी इकट्ठे कर लिए और सालेबा भी। ये तो बतौर मिसाल के है, और भी ज्यादा हो सकते हैं जितने भी आपको मिल जाएं भाई। अब दूसरे मुकदमात हम बनाएंगे जिसमें ये इंसान महमूल होगा, महमूल होगा, वो लिख लीजिए। मसलन कुल्लो कातिबिन इंसान उन, कुल्लो कातिबिन इंसान उन, कुल्लो जाहिकिन इंसान उन, कुल्लो जाहिकिन इंसान उन, लाशय अमीनल हजरी भी इंसान इन, लाशय अमीनल हजरी भी इंसान इन, बाजु शजरी लैसा भी इंसान इन, बाजु शजरी लैसा भी इंसान इन। देखो ये कुछ मुकदमात हमने मजीद इकट्ठे कर लिए जिसमें इंसान क्या है, महमूल है। ये थे असगर के बारे में। अब अकबर के बारे में लिखिए भाई, नीचे अलग सतर, अकबर से हासिल होने वाले मुकदमात, अकबर से हासिल होने वाले मुकदमात। अकबर क्या था, ऊपर देखें जौहर भाई, कुल्लो इंसान इन जौहर उन, ये नतीजा है। तो जौहर क्या है, अकबर है। जैसे लिखिए भाई, कुल्लू जौहरिन मौजूद उन, कुल्लू जौहरिन मौजूद उन, बाजुल जौहरी मुमकिन उन, बाजुल जौहरी मुमकिन उन। आगे लिखिए, लाशय अमीनल जौहरी बि आरजिन, लाशय अमीनल जौहरी बि आरजिन। और आगे लिखिए, बाजुल जौहरी लैसा बि लाशय इन, बाजुल जौहरी लैसा बी लाशय इन, बाज जौहर लाशय नहीं है, बाज जौहर लाशय नहीं है यानी शय है। देखो इन सब में देखो, जौहर मौजू है जो अकबर है, और कोई मुजीबा है और कोई सालेबा। अब हम कुछ मुकदमात वो इकट्ठे कर लेते हैं जिनमें ये जो अकबर है वो क्या बनेगा, महमूल बनेगा। अभी तक मौजू बना था, अब महमूल। लिखिए आगे, जैसे कुल्लो मुमकिन इन जौहरुन, कुल्लो मुमकिन इन जौहरुन, कुल्लो मुमकिन इन जौहरुन, कुल्लो जिस्मिन जौहरुन, कुल्लो जिस्मिन जौहरुन, लाशय अमीनल आरजी बी जौहरिन, लाशय अमीनल आरजी बी जौहरिन। देखा यह है तकसीर, ऊपर से हम चले नतीजे से, नतीजा ऊपर है ना, आला है दलील से, तो नतीजे से चले और नीचे हमने बहुत सारे मुकदमात बना लिए, असगर के भी और अकबर के भी। अब इनमें हम गौर करते हैं कि कोई कियास की सूरत बनती है इसमें या नहीं, शक्ल अव्वल सानी सालिस या राबे भाई। देखिए इंसान के बारे में जो मुकद्दिमात मैंने लिखवाए इसमें आप गौर करेंगे, देखें एक मुकद्दिमा आ रहा है कुल्लो इंसानिन जिस्मुन, कुल्लो इंसानिन, इस पर निशान लगा लें। मसलन हमें यह एक मुकद्दिमा मिला और इसमें देखो इंसान का महमूल क्या है, जिस्म। अब हम दूसरी जानिब जाकर देखते हैं अकबर में कि किसी मुकद्दमे में यह जिस्म मौजू बन रहा है अकबर का, किसी मुकद्दमे में यह जिस्म जो इंसान का महमूल है यह वहां अकबर का मौजू बन रहा है। हम वहां गए, हमने तलाश किया तो वहां हमें क्या मिला, कुल्लो जिस्मिन जौहरन, उस पर भी निशान लगाइए, कुल्लो जिस्मिन जौहरन। अब देखो असगर क्या है, इंसान, और अकबर क्या है, जौहर। मालूम हो ये जो जिस्म है ये है हद औसत भाई, और देखो शक्ल अव्वल की शराइत भी पूरी हैं। बात समझ में आ रही है भाई, कियास की शक्ल भी होनी चाहिए और कैफियत और कमियत के एतबार से शर्तें भी पूरी होनी चाहिए, तो वो शर्तें भी यहां पूरी। क्या शर्त थी, शक्ल अव्वल बन रही है, शक्ल अव्वल की कौन सी शर्तें, ईजाब सुगरा और कुल्लियत कुबरा, ये दोनों यहां हैं। तो आप नीचे लिख लीजिए अलग भाई, कुल्लो इंसान इन जिस्मुन, कुल्लो इंसान इन जिस्मुन, वकुल्लो जिस्मिन जौहरुन, वकुल्लो जिस्मिन जौहरुन, फकुल्लो इंसानिन जौहरुन, ये नतीजा आ गया, ये फा नतीजे पर दाखिल कर दें, फकुल्लो इंसानिन जौहरुन, तो ये शक्ल अव्वल बन गई भाई। बात समझ में आ गई, आप इस तरह मुकद्दमात बनाएंगे और गौर करेंगे तो कभी शक्ल अव्वल बनेगी, कभी शक्ल सानी बनेगी, कभी शक्ल सालिस बनेगी और कभी शक्ल राबिया बनेगी, और इस तरह आपको कयास हासिल हो जाएगा, दलील आपको मिल जाएगी। तरीका समझ में आ गया तकसीम वाला अच्छी तरह। अब आइए किताब पर, कौलुहु वही तकसीम का अन्नल मुराद बिही मायुसम्मा तरकीब अल कियासी ऐजन, गोया के इससे मुराद जो है वो चीज है जिसको तरकीबुल कियास भी कहते हैं, व जालिका, और वो तरकीब कियास ये है, बी अन युकाला, कि यूं कहा जाए, इदा अरदता तहसील मतलब मिनल मतालिब तस्दीकियति, जब आपका इरादा हो हासिल करना ऐसा मतलब जो मतालिब तस्दीकिया में से है, मतालिब तस्दीकिया में से किसी मतलब को जब हासिल करना आपका मकसद हो, फजा तारा फाइल मतलूब, वजा यजाऊ का माना है रखना, तारा फाइल मतलूबी, मतलूब यानी नतीजा, तो आप रख दें नतीजे की दोनों जानिबों को। नतीजे की दो जानिबें क्या थी, मौजू और महमूल, यानी असगर और अकबर, तो उनको रख दें यानी उनको अलहदा कर लें, तो फजा तारफाइल मतलूबी, तो आप नतीजे की दोनों तरफेन यानी मौजू और महमूल को अलहदा कर लें, व तुलुब जमी मौजूआत कुल्ल मिन हुमा व महमूलात कुल्ल वाहिद मिन हुमा। इधर देखिए उसके बाद क्या करना था, इनसे मुकदमे बनाने थे, किस तरह के मुकदमे, किसी में इनको मौजू बनाना था और किसी में इनको महमूल, यही बयान कर रहे हैं, वतलुब, और आप तलब कीजिए, जमीअ मौजूआत कुल्लिम मिन्हुमा, इनमें से हर एक के सारे मौजूआत को, इनके लिए मौजू तलाश करें और उन इनको क्या बनाएं, उसका महमूल बनाएं, व महमूलात इन, और आप तलब कीजिए इनके लिए वो सारे महमूल, वह महमूलात कुल वाहिद मिन हुमा, और इनमें से हर एक के महमूलात को तलब करें, यानी इनको मौजू बनाएं और आगे महमूलात इनके लेकर आएं, सवा उनका हमलु तरफैन अलैहा और हमलुहा अलैहिमा बिवासितिन और बगैर वासितिन, बराबर है कि तरफेन का हमल उन पर। इधर देखिए मौजू और महमूल यानी असगर और अकबर को आपने अलग कर लिया, अब असगर के लिए सारे मौजूआत भी तलाश करो और इसके लिए सारे महमूलात भी तलाश करो। इसी तरह अकबर के लिए भी सारे मौजूआत भी तलाश करो और सारे महमूलात भी तलाश करो, मुख्तलिफ मुकदमे बनाते चले जाओ। फिर ये जो हमल है, तवज्जो है, इनका हमल जो मुकदमे बनाएंगे, किसी में ये मौजू बनेंगे, किसी में ये महमूल, तो गोया किसी में इन पर हमल होगा और किसी में इनका हमल होगा, तवज्जो है, तो वही जिक्र करें, सवा उनका न हमल तरफैन अलैहा, बराबर है कि तरफैन का हमल हो अलैहा इन मौजूआत पर, औ हमलुहा या उन महमूलात का हमल हो अलैहिमा इन पर, उन महमूलात का हमल यानी इनका हमल हो मौजूआत पर यानी ये महमूल बने, या महमूलात का हमल हो इन पर यानी ये क्या बने, मौजू बने, बिवासितिन और बिगैरी वासितिन, चाहे वास्ते के साथ हो या बगैर वासिते के। भाई एक है वासिता, एक है बगैर वासिता। मसलन मैं कहता हूं अल आलम मुतगयिरुन, आलम क्या है, मुतगयिर है, आलम में तब्दीलियां आती हैं, और देखो यहां किसी वास्ते की जरूरत नहीं, यह बात बदीही है, आप भी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि इस कायनात में तब्दीलियां आती हैं, कभी तूफान आते हैं, कभी बारिश आती है, एक ही जगह दरिया बह रहा होता है, कुछ सालों के बाद वो अपनी जगह बदलकर दूसरी जगह बहने लगता है, बारिशें आती हैं, तूफान आते हैं, चीजें टूटती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, बात समझ में आ रही है, तो यह आलम क्या है, मुतगयिर है, इसमें तब्दीलियां आती हैं, यह बदीही चीज है, यहां किसी वास्ते की जरूरत नहीं, और बाज औकात किसी वास्ते की जरूरत होती है, मसलन मैं कहता हूं अल आलम हादिसुन, आलम क्या है, हादिस है, मैंने बताया हादिस का क्या माना, जो कदीम ना हो, कदीम उसको कहते हैं जिस पर कभी आदम ना आया हो, और हादिस वो जिस पर आदम आया हो, तो अब आलम हादिसुन, आलम पर आपने हादिस का हमल किया, और यह बात बराह रास्त नहीं है, नजरी है, यह क्या है, नजरी है, इसके लिए दलील चाहिए। अब पहले आपने आलम पर हमल किया था मुतगयर का, वहां किसी वास्ते की जरूरत नहीं, अब आप आलम पर हमल कर रहे हैं किसका, हादिस का, दरमियान में वास्ते की जरूरत है, किस तरह अल आलम मुतगयरुन व कुल मुतगयरेन हादिसुन, देखा ये मुतगयर का वास्ता जो हद औसत है, इसकी वजह से फिर हादिस का हमल होगा किस पर, आलम पर, तो बिवासितिन और बिगैरी वासितिन, वासिता से क्या मुराद है, नजरी, और बिला वास्ता से क्या मुराद है, बदी ही है, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं सवा उनका न हमलु तरफैनी अलैहा, बराबर है कि इन दो तरफैन यानी असगर और अकबर का हमल हो उन मौजूआत पर, और हमलुहा अलैहिमा या उन महमूलात का हमल हो इन दोनों पर यानी असगर और अकबर पर, बिवासितिन किसी वास्ते के जरिए यानी वो नजरी हो, और बगैर वासितिन या ये हमल हो बगैर वास्ते के यानी बदी ही हो, ये सारे मुकदमात आप जमा कर लें। वकजा उतलुब जमी अमा सुलिबा अन हु अहद तरफैन और सुलिबा हुआ अन अहद ही मा, इसी तरह आप तलब कर लीजिए वो सारे मा, अब यहां मा ले आए, ऊपर था मौजूआत और महमूलात, ऊपर क्या था, इनके लिए मौजूआत भी तलाश करो असगर और अकबर के लिए, और महमूलात भी तलाश करो, बात लंबी थी, शारिख ने कलाम को और मुख्तसर कर दिया, मा ले आए जमी आमा, अम्मा आम है, मौजूआत को भी शामिल और महमूलात को भी शामिल है। अब आपको बताएंगे कि जो आपने मौजूआत और महमूलात तलाश किए वो मुजिबा हो चाहे सालिबा हो, अब वो बयान करने लगे, कहते हैं वकदा उतलुब, और इसी तरह आप तलब कीजिए जमी अमा सुलिबा अनहु अहद तरफैनी, वो सारे मौजूआत जिनसे सल्ब किया हो, सल्ब किया गया हो अहद तरफैनी यानी मसगर या अकबर में से किसी एक को, औ सुलिबा हुआ अन अहदिहिमा, या इसी तरह तलब कीजिए वो सारे महमूलात कि उनको सल्ब किया गया हो, उनकी नफी की गई हो, अन अहदिहिमा इन दोनों में से किसी एक से, सुम मंजूर, फिर आप देखिए इला निस्बत तरफैनी इलल मौजूआती वल महमूलाती, वो जो निस्बत है इन दो तरफैन की उन मौजूआत और महमूलात की तरफ, यानी वो जो सारे मुकदमे आपने जमा कर लिए, अब इनके दरमियान निस्बत देखिए, यानी अब वो कियास तलाश करने की कोशिश करो जिसे शक्ल अव्वल सानी सालिस या राबिया बन जाए। ये माना है सुम मंजुर इला निस्बती तरफैन इलल मौजूआत वल महमूलाति, फिर आप देखिए वो जो तरफैन की निस्बत हो रही है मौजूआत और महमूलात की तरफ, किसी में ये मौजू है किसी में महमूल है, उन निस्बतों को देखिए। फइन वजदता, बस अगर आप पा लें मिन महमूलाति मौजू अल मतलूबी, इसको तवज्जो से समझना, मिन महमूलाति मौजू अल मतलूबी, मतलूब यानी नतीजा, अगर आप पाए नतीजे के मौजू के महमूलात में से, तवज्जो है, नतीजे के मौजू के महमूलात, शक्ल अव्वल की बात कर रहे हैं, शक्ल अव्वल में असगर क्या होता है सुगरा के अंदर मौजू, तो इसका जो महमूल होगा वो अगर अकबर के लिए क्या बन रहा हो कुबरा में मौजू, तवज्जो है, शक्ल अव्वल में असगर क्या है मौजू, तो इसका जो महमूल होगा अगर ये महमूल अकबर के लिए दूसरे मुकदमे में क्या बन रहा है मौजू बन रहा है, तो समझ जाओ ये क्या है शक्ल अव्वल है। फइन वजदता, अगर आप पालें मिन महमूलाति मौजू अल मतलूबी, मतलूब यानी नतीजे के मौजू के महमूलात में से, मा उस वो महमूल, हुआ मौजूउन लि महमूलिही, जो मौजू है लि महमूलिही नतीजे के महमूल के लिए, फकद हसल अल मतलूबु मिन अश्शक्ल अल अव्वली, तो तहकीक मतलूब हासिल यानी नतीजा हासिल हो गया शक्ल अव्वल से, शक्ल अव्वल से। और मा हुआ महमूलुन अला महमूलिही, दूसरी सूरत, शक्ल सानी में क्या था, तवज्जो है, शक्ल सानी में क्या था, हद औसत दोनों जगह महमूल बनता था, क्या बनता था, तो अगर आप इधर देखिए, अगर आप इन मुकदमात में पाए कि नतीजे के मौजू का जो महमूल है यानी सुगरा, नतीजे के सुगरा के अंदर हद औसत कहां आएगा महमूल, और कुबरा में भी क्या आएगा महमूल शक्ल सानी, तो अगर आप ये आप सुगरा पे जरा नजर रखो, अगर आप सुगरा के अंदर नतीजे के मौजू का जो महमूल है अगर आप दूसरे मुकदमे में भी देखें कि यही महमूल बन रहा है किसके लिए, नतीजे के महमूल के लिए, अकबर क्या है नतीजे का, नहीं तवज्जो, नहीं तवज्जो, इबारत देखो, इधर देखिए, देखो फिर इबारत पे नजर रखो, फइन वजदता मिन महमूलाति मौजू अल मतलूबी, अगर आप पाए नतीजे के मौजू के महमूलात में से, नतीजे के मौजू के महमूलात, ये कौन सा मुकदमा है सुगरा है, नतीजे का मौजू मौजू है और उसका महमूल है, इसके महमूलात में से अगर कोई आप ऐसा पाए मां कोई ऐसा महमूल पाए, हुआ मौजू ओनली महमूली ही, जो मौजू है इस नतीजे के महमूल के लिए यानी अकबर के लिए, क्या है अकबर के लिए मौजू है, तो फिर यह शक्ल अव्वल, और अगर अब यह मा हुआ मौजू उन लि महमूली ही, इसको हटाएं और नीचे वाली इबारत देखें, मा हुआ महमूल उन आला महमूली ही, और अगर आप यह पाएं कि नतीजे के मौजू के महमूलात में से कोई महमूल ऐसा है जो जो नतीजे के महमूल के लिए भी महमूल बन रहा है यानी अकबर के लिए क्या बन रहा है महमूल बन रहा है, मालूम हो यह कौन सी सूरत बन गई शक्ल सानी। यह माना है औ मा हुआ महमूल उन आला महमूली ही या असगर के महमूलात। अच्छा अच्छा यूं करें, इबारत को समझने के लिए और बेहतर सूरत यह है, पीछे आया ना, फइन वजदता मिन महमूलाति मौजू अल मतलूबी, यह मौजू अल मतलूब की जगह असगर ले आए, अगर आप पाए असगर के महमूलात में से मा हुआ मौजू उन जो क्या है मौजू है लि महमूल ही अली महमूल मतलूब, इसकी जगह अकबर ले आए, मौजू अल मतलूब की जगह क्या लाए असगर, और लि महमूल ही की जगह क्या ले आए अकबर। फइन वजदता, अगर आप पाए मिन महमूलाति असगर, असगर के महमूलात में से मा कोई ऐसा महमूल हुआ मौजूउन लि अकबर जो क्या हो मौजू हो किसके लिए अकबर के लिए, फकद हसल अल मतलूब मिन अश्शक्ल अव्वल, तो तहकीक मतलूब यानी नतीजा हासिल हो गया शक्ल अव्वल से। او ما ہوا محمول علی محمولہ، یا ایسا محمول پائیں جو محمول ہے علی محمولہ، ای علی اکبر، کس پر؟ عبارت پہ نظر ہے، فَإِن وَجَدْتَ مِن مَحْمُولَاتِ مَوْزُوعِ الْمَطْلُوبِ، اس کو جوڑ دیں اب آگے والے عبارت، ما ہوا محمول علی محمولہ، موضوع المطلوب کی جگہ کیا لے آئے تھے آپ؟ اصغر، آگے علی محمولہ جو آ رہا ہے اس کی جگہ کیا لے آئیں؟ اکبر لے آئیں. فَإِن وَجَدْتَ، اگر آپ پائیں، مِن محمولات اصغر، اصغر کے محمولات میں سے، ما کوئی ایسا محمول، کہ ہوا محمول علی اکبر، جو اکبر کا بھی کیا ہے؟ محمول ہے. فَمِنَ الشَّكْلِ ثَانِي، تو یہ کیا ہے؟ شکل ثانی ہے. او من موضوعات موضوعہ، یا آپ پالیں من موضوعات موضوعہ، موضوعہ کے ہاں ضمیر راجع ہے مطلوب یعنی نتیجے کو، نتیجے کا موضوع، اور نتیجے کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ اصغر. تو یہ موضوعہ کی جگہ ذرا اصغر کو ذہن میں رکھیں. اور اگر آپ پائیں، من موضوعات کا عطف ہے من محمولات پر، یا آپ پائیں من موضوعات موضوعہ، ای من موضوعات اصغر، اگر آپ اصغر کے موضوعات میں سے پائیں، ما ہوا موضوع لمحمولہ، جو موضوع ہے لمحمولہ ای لی اکبر، جو موضوع ہے کس کے لیے؟ پھر غور کریں عبارت میں، اگر آپ اصغر کے موضوع میں سے پالیں جو اکبر کے لیے بھی موضوع ہے، اصغر کے لیے بھی موضوع اور اکبر کے لیے بھی موضوع ہے، معلوم ہوا یہ کون سی شکل ہے؟ شکل ثالث ہے بھائی. یہ معنی ہے او من موضوعات موضوعہ، یا آپ نتیجے کے موضوع کے موضوعات میں سے، یعنی اصغر کے موضوعات میں سے آپ پالیں، ما کوئی ایسی چیز، ہوا موضوع لمحمولہ، جو اس نتیجے کے محمول کے لیے موضوع ہو، یعنی اکبر کے لیے موضوع ہو. فمن الشکل الثالث، تو یہ کس سے ہوگا؟ شکل ثالث سے جو قیاس ہوگا. او محمول لمحمولہ، اس کا عطف ہے موضوع لمحمولہ، جو ابھی پاس ہی گزرا ہے. عبارت کیا بن گئی؟ او من موضوعات موضوعہ ما ہوا محمول لمحمولہ. عبارت سمجھ میں آ گئی. اب موضوعہ کی جگہ کیا رکھا تھا؟ اصغر. اور محمولہ کی جگہ کیا رکھنا ہے؟ اکبر. اب عبارت سنو، اور یا آپ پالیں اصغر کے موضوعات میں سے ایسی چیز ما ہوا، کہ وہ جو ہے محمول اکبر، جو محمول ہے کس کے لیے؟ اصغر کے لیے جو موضوع ہے وہ اکبر کے لیے کیا ہے؟ محمول ہے. یہ کون سی شکل بن گئی؟ شکل رابع بن گئی بھائی. اچھا، فمن الشکل الرابع، تو یہ قیاس ہے کس سے؟ شکل رابع سے. فمن الشکل الرابع، دیکھو وہ پیچھے ہی عبارت آئی تھی، فقد حصل المطلوب من الشکل الاول، تو تحقیق نتیجہ حاصل ہوا کس سے؟ شکل اول سے. اسی طرح آگے آیا، فمن الشکل الثانی، تو وہ نتیجہ حاصل ہوا کس سے؟ شکل ثانی سے. اور آگے آیا، فمن الشکل الثالث، تو وہ نتیجہ حاصل ہوا کس سے؟ شکل ثالث سے. اور آگے آیا، فمن الشکل الرابع، تو وہ نتیجہ حاصل ہوا شکل رابع سے. کل ذالک باعتبار الشرائط بحسب الکمیت والکیفیت، اور یہ سارا جو ہے شرائط کے اعتبار سے ہوگا، کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے. یعنی آپ نے شرطوں کا لحاظ رکھنا ہے، شکل اول کی شرطیں پوری ہونی چاہیے، ثانی کی، ثالث، رابع، ہر ایک کی شرطیں پوری ہونی چاہیے، اس کے بغیر یہ منتج نہیں ہوگا. قذافی شرح المطالے، جیسے کہ شرح مطالے میں ہے، وقد عبر المصنف رحمه الله عن هذا المعنى بقوله اعني التكسير، اور اسی معنی کو تعبیر کیا مصنف نے اپنے قول اعني التكسير سے، اي تكسير المقدمات، یعنی مقدمات کو زیادہ کرنا، آخذا من فوق، اوپر سے لیتے ہوئے، اي من النتيجه، کس سے؟ نتیجے سے. فوق سے کیا مراد ہے؟ نتیجہ. نتیجے سے لیتے ہوئے، لِأَنَّهَا الْمَقْصَدُ الْأَعْلَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى الدَّلِيلِ، اس لیے کیونکہ نتیجہ جو ہے وہ مقصد اعلیٰ ہے دلیل کی نسبت سے، دلیل کا درجہ کم اور نتیجہ اعلیٰ ہے. بات سمجھ میں آ گئی. قَوْلُهُ وَالتَّحْلِيلِ، تحلیل کا معنی لکھ لیجئے بھائی، لکھئے بھائی، لکھئے. تحلیل کا لغوی معنی ہے तहलील का लुगवी माना है खोलना, किसी चीज को खोलना, तजजिया करना, तजजिया करना, तजजिया करना, किसी शय को असल अजजा की तरफ लौटाना, किसी शय को असल अजजा की तरफ लौटाना, ये लुगवी माना मैंने बयान किया। बात समझ में आ गई? किसी चीज को खोलना, तजजिया करना, और किसी शय को उसके असल अजजा की तरफ लौटाना। अलग सतर लिखिए, इस्तेलाह में तहलील इसे कहते हैं, इस्तेलाह में तहलील इसे कहते हैं कि उलूम में मजकूर, उलूम में मजकूर बेकायदा कियासात, बेकायदा कियासात को मंतिकी कियासात की सूरत पर लाना, को मंतिकी कियासात की सूरत पर लाना। क्या लिखा? और इस्तेलाह में तहलील इसे कहते हैं कि उलूम में मजकूर बेकायदा कियासात को मंतिकी कियासात की सूरत पर लाना। बात समझ में आ गई? यह है तहलील। भाई याद रखिए, बाज औकात किताबों के अंदर कियास जिक्र होता है लेकिन बाकायदा शक्ल अव्वल, शक्ल सानी, शक्ल सालिस वगैरह किसी सूरत पर नहीं होता। भाई मुसन्निफ जो है वो पढ़ने वाले के मंतिक पर एतमाद करते हुए कि ये मंतिक जानता होगा, बेकायदा सूरत में कियास को जिक्र कर देता है, बाकायदा मुकदमात बनाकर, जैसे कि शक्ल अव्वल सानी सालिस वगैरह में या कियास इस्तिस्नाई वगैरह में होता है, इस तरीके पर जिक्र नहीं करता, बेकायदा तौर पर बस वैसे ही एक जुमले के जरिए कियास की तरफ इशारा करते हुए यूं कहीं निकल जाता है कि पढ़ने वाला इतनी मंतिक जानता होगा वो खुद ही समझ लेगा इसको। तो ये जो बेकायदा कियास है किताब के अंदर, इसको बाकायदा कियास की सूरत देना और उसको तैयार करना, यह है तहलील। भाई यह क्या है? तहलील है। देखो तहलील का क्या माना था लुगत में? खोलना, तजजिया करना, किसी शय को उसके असल अजजा की तरफ लौटाना। यहां पर भी आपने बेकायदा कियास को असल कियास की सूरत की तरफ लौटा दिया। देखिए भाई अब किताब पर, तो ऊपर मतन भी देख लें, मतन में क्या आया? वह तहलील अक्सुहु, और तहलील इसका बरअक्स है, तहलील इसका बरअक्स है, यानी तकसीम के बरअक्स है। तकसीम में क्या था? तकसीर थी मिन फौकिन, ऊपर से नीचे की तरफ, और तहलील उस तकसीम के बराक्स है, यानी इसमें तकसीर होगी इला फौकिन, ऊपर की तरफ। भाई नीचे दलील से कहां तक पहुंचना है? नतीजे तक। पहले हम नतीजे से चले थे और क्या हासिल किया था? कियास और दलील। नतीजा हमारे पास था, कियास हमने उसको देखकर बना लिया। और दूसरी सूरत क्या है? तहलील, कि कियास आपके पास है लेकिन बेकायदा है, उसको कियास वाली तरतीब दें ताकि मतलूबा नतीजा हासिल हो जाए। तो कहते हैं कौलहू व तहलीलु फी शरह मतालेई, शरह मतालेई में है, शरह मताले में मजकूर है, कसीरम मा यूरदु फिल उलूम कियासातुन मुंतिजतुन लिल मतालिबी ला अला है आतिल मंतिकियती, कि बसा औकात, कसीरम मा बसा औकात, यूरदु फिल उलूमी, उलूम में लाए जाते हैं, कियासातुन मुंतिजतुन लिल मतालिबी, ऐसे कियासात, बसा औकात उलूम में ऐसे कियासात लाए जाते हैं, मुंतिजतुन लिल मतालिबी, जो नतीजा देते हैं, मतालिब यानी मतलूबा, मतालिब जो हैं यानी नतीजे वो देते हैं, ला अलल है अतिल मंतिकियती, लेकिन वो मंतिकी सूरत पर नहीं होते, लितसाहुलिल मुरक्किबी, मुरक्किब जोड़ने वाला, कियास को बनाने वाला, यानी जो मुसन्निफ है, लितसाहुलिल मुरक्किबी, बवजह कियास को जोड़ने वाले की नरमी के। तसाहुल का क्या माना? नरमी। यानी नरमी कह लें या सुस्ती कह लें कि जो कयास जोड़ने वाला है उसकी नरमी और सुस्ती की वजह से एतमादन अलल फितरतिल आलिमति बिल कवाइद, मेरी किताब में इबारत यूं है लेकिन यह दुरुस्त इबारत नहीं, एतमादन अलल फतीनिल आलिमी बिल कवाइद होना चाहिए। फितरत नहीं, अल फतीन, फतीन फतीन का माना जहीन भाई जहीन, अलल फतीन अल आलिमी बिल कवाइद, एतमाद करते हुए अलल फतीनिल आलिमी बिल कवाइदी, उस जहीन तालिब इलम पर, उस जहीन शख्स पर, अल आलिमी बिल कवाइदी जो उन मंतिक के कवायद को जानता है। मुसन्निफ जो है सुस्ती से काम लेता है या नरमी से काम लेता है, पूरी मंतिकी सूरत जिक्र नहीं करता, किस पर एतमाद करता है, मंतिक के कवायद को जानने वाले जहीन शख्स पर एतमाद करते हुए। तर्जमा समझ में आ गया, यह माना है लितसाहुलिल मुरक्किबि इतमादन अलल फतीनिल आलिमी बिल कवाइदी, कियास को जोड़ने वाले की नरमी की वजह से एतमाद करते हुए उस जहीन शख्स पर जो जानने वाला है मंतिकी कायदों को। फइन अरदता अन तारिफा अन्नहु अला अय्यि शक्लिन मिनल अशकाली, बस अगर आपका यह इरादा हो कि आप जान लें कि यह कौन सी शक्ल है अशकाल में से, यानी ये कियास किस शक्ल पर है, कियास की शक्लों में से किस शक्ल पर है, मुसन्निफ ने तो पूरा जिक्र नहीं किया, आप उसको जानना चाहते हैं। फअलैका बित्तहलील, तो आप लाजिम पकड़ें तहलील को, यानी तहलील के तरीके को लाजिम पकड़ें, उससे आपको पता चल जाएगा। वह हुआ, और वो क्या है, कहते हैं वह हुआ अक्सु तरतीबी, और वो इस मजकूरा तरतीब का बरअक्स है। ये जो ऊपर तरतीब जिक्र हुई है उसके बरअक्स है तहलील, उसमें हम क्या करते थे, नतीजे से दलील की तरफ जाते थे, अब दलील से किसकी तरफ जाएंगे, नतीजे की तरफ। यानी वो था मिन फौकिन, ऊपर से था, और ये क्या होगा, इला फौकिन, ये ऊपर की तरफ होगा। तो कहते हैं वह हुआ अक्सु तरतीबी, और वो इस मस्कूरा तरतीब का बरअक्स है। हत्ता यहसुल मतलूब, यहां तक के मतलूब हासिल हो जाए। फंजुर इलल कियास अल मुंतजी लहू, बस आप देखिए उस कियास पर जो नतीजा दे रहा है उस मतलूब का। भाई मुसन्निफ ने कुछ ना कुछ तो जिक्र किया होगा, एक दो मुकदमे तो जिक्र किए होंगे, आप उस पर अब आप गौर कीजिए। फंजुर इलल कियास अल मुंतजी लहू, बस आप देखिए उस कियास पर जो नतीजा दे रहा है उस मतलूब का। फइन कान फीही मुकदमतुन तुशारिकुल मतलूब बिकिला जुज ऐ ही फल कियास इस्तिस्नाइयुन, भाई कियास इस्तिस्नाई, इसका तरीका जरा लिख लें पहले, फिर इबारत हम हल करते हैं। भाई इबारत हल करते हैं, लिखिए तहलील का तरीका, तहलील का तरीका। नंबर एक, हाज़ शय उशजरुन औ हजरुन, हाज़ शय उशजरुन औ हजरुन, लाकिन्नहु हजरुन, लाकिन्नहु हजरुन, फहाज़श्शैउ, फहाज़श्शैउ लैसा बिशजरिन, फहाज़श्शैउ लैसा बिशजरिन। तवज्जो है, देखो ये मैंने नतीजा आपको लिखवाया, फहाज़श्शैउ लैसा बिशजरिन, ये शय शजर नहीं, पीछे कियास इस्तिस्नाई जिक्र था। हादा शय उ शजरुन औ हजरुन लाकिन न हो हजरुन, यह है कियास इस्तिस्नाई। कियास इस्तिस्नाई किसे कहते थे, जिसमें नतीजा या नकीज नतीजा मजकूर होती है। तो वह जो है, तो यहां पर नतीजा क्या आया, फहादा शय उल्लई सभी शजरिन, बेआईन ही यही नतीजा मजकूर है कियास में, इसके शुरू में आया हादा शय उ शजरुन, हादा शय उ, और नतीजा क्या है, फहादा शयो लैसा बिशजरिन। देखो वही मौजू महमूल है, सिर्फ वहां सलब है नतीजे में और कियास में ईजाब है, तो मौजू और महमूल वही होंगे। तो देखो यहां कियास के अंदर नतीजा मजकूर है या नकीज नतीजा, नकीज नतीजा मजकूर है, नतीजा तो है सालिबा, और कियास में किस सूरत में जिक्र है, मुजीबा जिक्र है, हाद शय ओ शजरु। बात समझ में आ गई। तो ये कियास इस्तिस्नाई जो है ये इसमें नतीजा या नकीजे नतीजा खुद कियास में मजकूर होता है। देखो हाद शय उलैस बिशजरि नतीजा है, इसमें हाद शय है मौजू और शजर क्या है महमूल, और कियास में भी देख लो हाद शय क्या है मौजू और शजर क्या है महमूल है, तो वही मौजू और महमूल जो है वो कियास में भी मजकूर हो तो इसको कियास इस्तिस्नाई कहते हैं। और दूसरा कियास कियास इक्तिरानी था, उसमें नतीजे का मौजू एक मुकदमे में होता है और नतीजे का महमूल दूसरे मुकदमे में, यहां तो मौजू और महमूल दोनों इकट्ठे थे, तवज्जो है, तो उसको कियास इक्तिरानी कहते हैं। भाई अब आपको बताएंगे मसलन मुसन्निफ ने कियास दिया हुआ है लेकिन मंतिकी जाब्तों के मुताबिक नहीं जिक्र किया, तो आप उस कियास में गौर कर लें। अगर आप देखें कि कियास के मौजू और महमूल दोनों इकट्ठे, अगर आप यह देख लें कि नतीजे के अंदर जो मौजू और महमूल हैं फहाद शय उलैस बे शजर, अगर ये दोनों उस मुसन्निफ ने जो मुकदमे जिक्र किए उनमें से किसी में भी ये दोनों इसी तरह इकट्ठे हैं, चाहे ये खुद हैं चाहे इनकी नकीज है, तवज्जो है, चाहे ये खुद हैं चाहे इनकी नकीज, लेकिन है इकट्ठे, नतीजे में हादश है मौजू है और शजर क्या है महमूल, और कियास के अंदर भी ये एक दोनों एक दूसरे के मौजू और महमूल हैं, तो समझ जाना ये कौन सा कियास है, कियास इस्तिस्नाई है, आप इसको बाकायदा कियास की सूरत दे देना। और अगर एक ही मुकदमे में दोनों जुज नहीं है, नतीजे के जो मौजू और महमूल हैं इकट्ठे नहीं है कियास के अंदर, एक जुज है दूसरा जुज नहीं है, तो समझ जाओ कि यह कियास इख्तिरानी है। भाई ये क्या है, फिर देखो नतीजे का कौन सा जुज जिक्र किया है मुसन्निफ ने, असगर को जिक्र किया है या अकबर को, अगर असगर जिक्र है किसी मुकदमे में, अकबर को तो जिक्र ही नहीं किया मुसन्निफ ने, पूरा कियास नहीं है, एक दो मुकदमे हैं और उनमें से एक में सिर्फ कौन जिक्र है असगर जिक्र है, अकबर कहीं पर भी नहीं, बस सीधा नतीजा आगे निकाल दिया है आप पर एतमाद करते हुए कि पढ़ने वाला खुद समझ जाएगा, उसने सिर्फ असगर को एक मुकदमे में जिक्र किया है, अगर असगर एक मुकदमे में जिक्र है समझ जाओ ये सुगरा है, अब इसके लिए आपने कुबरा तलाश करना है, कुबरा खुद बनाना है, तरीका समझ में आ रहा है। और अगर इसने किसी मुकदमे के अंदर अकबर को जिक्र किया हुआ है तो समझ जाओ ये कौन सा मुकदमा है, कुबरा है, अब आपने इसके लिए क्या तलाश करना है, सुगरा तलाश करना है, वो खुद बनाना है आपने, तवज्जो है। मुसन्निफ ने एक नतीजा दिया हुआ है लेकिन कियास पूरी शक्ल नहीं कियास की, तो अगर जो नतीजे के मौजू और महमूल हैं अगर वो दोनों कियास के अंदर भी किसी जगह इकट्ठे उसने जिक्र किए हैं तो समझ जाओ ये कौन सा कियास है, कियास इस्तिस्नाई, और अगर इकट्ठे नहीं है दोनों में से एक को जिक्र किया है और दूसरे को जिक्र ही नहीं किया, या दूसरे को जिक्र तो किया है लेकिन कियास की कोई बाकायदा सूरत नहीं बन रही, तो समझ जाओ ये तो कियास इख्तिरानी है, अब मैंने तैयार करना है, अब इसमें देखो इसने असगर को जिक्र किया है या अकबर को, अगर असगर को जिक्र किया है किसी मुकदमे के अंदर, नतीजे में नहीं नतीजे के अलावा जो मुकदमात हैं उनमें किसी जगह उसने असगर को जिक्र किया है, समझ जाओ यह सुगरा है, अब मैंने किसको तलाश करना है, कुबरा, कुबरा अब आपको खुद बनाना पड़ेगा, या उसने अकबर को जिक्र किया हुआ है तो समझ जाओ ये क्या है, कुबरा है, तो अब सुगरा आपको खुद तलाश करना पड़ेगा, तरीका समझ में आ रहा है। मसलन अब हम उसकी मिसाल कर लेते हैं, लिखिए भाई तरीका नंबर एक, तरीका नंबर एक लिखिए भाई, तरीका नंबर एक, ये तहलील के तरीके हम कर रहे हैं, तवज्जो है जी। मसलन मुसन्निफ ने लिखा है, लिखो भाई, मुसन्निफ ने लिखा है बाजुल हैवानी जाहिकुन, बाजुल हैवानी जाहिकुन व कुल्लु इंसानिन जिस्मुन, व कुल्लु इंसानिन जिस्मुन फकुल्लु इंसानिन जौहरुन, फकुल्लु इंसानिन जौहरुन। आप गौर कर रहे हैं, मुसन्निफ ने सिर्फ ये दो बातें दी, क्या बाजुल हैवानी जाहिकुन व कुल्लो इंसानिन जिस्मुन, आगे फौरन नतीजा दर्ज कर दिया फकुल्लो इंसानिन जौहरुन, पस हर इंसान क्या है जौहर है, नतीजा निकाल दिया कयास नहीं पीछे दिया पूरा, अब आप परेशान हैं कि यह कौन सी शक्ल है, तो अब आपको खुद कयास बनाना पड़ेगा। अब आपने नतीजे में गौर किया, फकुल्लो इंसानेन जौहरन, मौजू क्या इंसान, महमूल क्या जौहर, मालूम हुआ इंसान है असगर और जौहर है अकबर। अब हमने उसके मुकदमात में गौर किया, किसी जगह असगर या अकबर आ रहा है पीछे मुकदमात में, जे कौन से मुकदमे में है असगर या अकबर, कुल्लो इंसान इन जिस्मन, इसमें असगर जिक्र है, मालूम हुआ ये सुगरा है। अब कुबरा आपने खुद बनाना है जी, अब क्या करेंगे, तवज्जो है, अब हमने कुबरा बनाना है, किस तरह बनाना है, जरा जुमलों पे नजर रखो, नतीजा क्या, कुल्लो इंसान इन जौहरुन, और कौन से मुकदमे में इंसान मिला, कुल्लो इंसान इन जिस्मुन, ये क्या है सुगरा, अब हमें क्या चाहिए कुबरा, तो ये कुल्लो इंसान इन जिस्मुन, जरा इस मुकदमे पे नजर रखो, इसमें एक जुज तो असगर है, दूसरा जुज मालूम है वो हद औसत बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, तो इस हद औसत को नतीजे के महमूल के साथ मिलाकर जुमला बनाने की कोशिश करो, क्या बना, कुल्लो जिस्मिन जौहरुन, देखा कुल्लो जिस्मिन जौहरुन, ये है कुबरा भाई, और देखो शक्ल अव्वल तैयार हो गई, कुल्लो इंसान इन जिस्मुन व कुल्लो जिस्मिन जौहरुन, नतीजा क्या निकला, कुल्लो इंसान इन जौहरुन, देखा इस तरह आपने खुद कयास तैयार कर लिए, किस तरह बनाया कि आपने देखा जो उसने मुकदमात दिए हैं उसमें असगर है या अकबर, अगर असगर है मालूम हुआ यह है सुगरा, और अगर अकबर है तो कुबरा, तो दूसरा मुकदमा आपने खुद तलाश करना है, तो मसलन हमने नतीजा क्या था, कुल्लो इंसानिन जौहरुन, इसमें असगर क्या इंसान, यह किस मुकदमे में था, कुल्लो इंसानिन जिस्मुन, तो कुल्लो इंसानिन यह तो है असगर और जिस्मुन क्या है यह महमूल है, मालूम हुआ इसने क्या बनना है, हद औसत बनना है, तो इसको नतीजे के दूसरे जूस के साथ मिलाओ और कुबरा बना लो, कुल्लो जिस्मिन जौहरुन, तो मसला हल हो गया। लिहाजा अब इसके नीचे लिखो, कयास की पूरी शक्ल बना दो, कुल्लो इंसान इन जिस्मुन, कुल्लो इंसान इन जिस्मुन व कुल्लो जिस्मिन जौहरुन, व कुल्लो जिस्मिन जौहरुन, नतीजा क्या आया, फकुल्लो इंसान इन जौहरुन, ये शक्ल अव्वल बन गई, फकुल्लो इंसान इन जौहरुन, यहां तक बात समझ में आ गई। ये तो एक सूरत थी कि मुसन्निफ ने सिर्फ सुगरा या कुबरा दे दिया था और उसके साथ दूसरा मुकदमा आपने मिला दिया। कभी ऐसा होता है कि वो कयास मुरक्कब होता है, आप उसके साथ कोई और मुकदमा जोड़ें फिर भी नतीजा नहीं आता, आपको फिर एक तीसरा मुकदमा भी लाकर मिलाना पड़ता है। तो दरअसल वहां एक कयास नहीं होता, कितने कयास होते हैं, दो होते हैं, मुसन्निफ एक आध मुकदमा जिक्र करके आगे चला जाता है, बाकी पूरा कयास तैयार करना आपका काम होता है। वो किस तरह है? उसकी भी एक मिसाल कर लीजिए, मसलन लिखिए भाई, लिखिए तरीका नंबर दो, तरीका नंबर दो, तरीका नंबर दो, कयास मुरक्कब, कयास मुरक्कब की सूरत, कयास मुरक्कब की सूरत जी लिखिए। मसलन मुसन्निफ ने सिर्फ यह जिक्र किया, मसलन मुसन्निफ ने सिर्फ यह जिक्र किया, बाजुल हैवानी जाहिकुन, बाजुल हैवानी जाहिकुन व कुल्लो इंसान इन जिस्मुन, व कुल्लो इंसान इन जिस्मुन, और फिर नतीजा जिक्र किया, और फिर नतीजा जिक्र किया, और फिर नतीजा जिक्र किया, फकुल्लो इंसान इन मुमकिन, फकुल्लो इंसान इन मुमकिन। बात समझ में आ रही है, अब इस पे जरा गौर करो जी, नतीजा क्या है, फकुल्लो इंसान इन मुमकिन, असगर क्या इंसान, अकबर क्या मुमकिन, पीछे जो मुकदमात दिए किसी में असगर या अकबर आ रहा है, कौन है, कौन सा, कुल्लो इंसान इन जिस्मुन, इसमें असगर आ रहा है, मालूम हुआ यह है सुगरा। अब कुबरा हमने तलाश करना है, यह क्या है, सुगरा। अब हम देखते हैं यह सुगरा है, कुल्लो इंसान इन जिस्मुन, कुल्लो इंसान इन जिस्मुन में असगर क्या, इंसान, दूसरा जुज क्या, जिस्म। मालूम हुआ इस जिस्म को हम हद औसत बनाने की कोशिश करते हैं, हमने जिस्म को हद औसत बनाने की कोशिश की, कुल्लो जिस्मिन मुमकिन, कुल्लो जिस्मिन, लेकिन नहीं ये तो बन नहीं रहा। फर्ज कर लो कोई सूरत है कि वहां इस तरह सूरत बन नहीं रही, यानी उसके लिए कोई दलील वगैरह चाहिए, बराह रास्त कुल्लो जिस्मिन मुमकिन आप नहीं कह सकते, तो फिर आप क्या कहते हैं, सुगरा क्या, कुल्लो इंसानिन जिस्मुन, कुबरा हमें क्या चाहिए, कुल्लो जिस्मिन मुमकिन, लेकिन वो बन नहीं रहा। मालूम हुआ ये कियास मुरक्कब है, सिर्फ दो मुकदमों से काम नहीं चलेगा, यहां एक तीसरा मुकदमा भी लाना पड़ेगा। चुनांचे चुनांचे आपने इसमें गौर किया, आपने किसको किससे जोड़ना है, जिसम को जो मुकदमे का दूसरा जुज है, सुगरा का जो दूसरा जुज है उसको आप जोड़ना चाहते हैं किससे, नतीजे के दूसरे जुज से, नतीजे का दूसरा जुज क्या, मुमकिन, जिसम को मुमकिन से जोड़ना चाहते हैं, और बराह रास्त नहीं जुड़ रहा, फर्ज वैसे तो जुड़ रहा है, कुल्लो जिस्मिन मुमकिन भी आप कह सकते हैं, लेकिन फर्ज करो वो जुड़ नहीं रहा, कोई ऐसी सूरत बन गई। तो अब आप यूं करेंगे कि जिस्म और मुमकिन इनके दरमियान कोई चीज हद औसत बनेगी जो दोनों को आपस में जोड़ दे, गौर करेंगे किसको किससे जोड़ना चाहते हैं, जिस्म को किससे, नतीजे के दूसरे जुज से। तो अब इन दोनों में आप गौर करते हैं कोई ऐसी चीज जो दोनों के दरमियान हद औसत हो, तो अगर हद औसत आपको मिल जाए, मसलन हर जिस्म भी जौहर है और हर जौहर क्या है, मुमकिन, देखा जिस्म जौहर से जुड़ रहा है और जौहर किससे जुड़ रहा है, मुमकिन से जुड़ रहा है, मालूम है हद औसत हमें मिल गया, क्या मिल गया, हद औसत हमें मिल गया। तो गोया कियास यूं हुआ, नीचे लिखिए भाई, नीचे लिखिए कुल्लो इंसान इन जिस्मुन, ये कियास है भाई, लिख लेना ताकि आपको याद रहे, ये मुकदमात नहीं चल रहे, अब कियास है, कुल्लो इंसान इन जिस्मुन, कुल्लो इंसान इन जिस्मुन व कुल्लो जिस्मिन जौहरुन, व कुल्लो जिस्मिन जौहरुन, बात समझ में आ गई, कुल्लो इंसान इन जिस्मुन और कुल्लो जिस्मिन जौहरुन, और आगे लिखिए व कुल्लु जौहरिन मुमकिनुन, व कुल्लु जौहरिन मुमकिनुन, आगे नतीजा लिखिए फकुल्लु इंसानिन मुमकिनुन, फकुल्लु इंसानिन मुमकिनुन। देखा ये कियास मुरक्कब है, तीन मुकदमात के जरिए हम नतीजे तक पहुंचे, पहला मुकदमा क्या, हर इंसान जिस्म है और हर जिस्म फिर क्या है, जौहर है, और फिर हर जौहर क्या है, मुमकिन है, नतीजा क्या निकला, ये दरअसल दो कियास हैं, दो दो को जोड़ लो, दो अलग कियास आप बना लो, देखो कुल्लो इंसान इन जिस्मुन व कुल्लो जिस्मिन जौहरुन, नतीजा क्या निकला, नतीजे कुल्लो इंसान इन जिस्मुन व कुल्लो जिस्मिन जौहरुन, इन दोनों का नतीजा निकालो, कुल्लो इंसान इन, नहीं तवज्जो नहीं है, तवज्जो नहीं है, दो जो मुकदमे पहले दो है सिर्फ उन पे नजर रखो, कुल्लो इंसान इन जिस्मुन व कुल्लो जिस्मिन जौहरुन, नतीजा क्या आया, कुल्लो इंसान इन जौहरुन, क्या आया, ये पहला कयास, फिर कुल्लो इंसान इन जौहरुन को मिलाया किस से, तीसरे मुकदमे से, कुल्लो इंसान इन जौहर उनको किससे जोड़ा, कुल्लो जौहरेन मुमकिन उनसे जोड़ा, तो नतीजा क्या आया, कुल्लो इंसान इन मुमकिन उन, तरीका समझ में आया, देखिए किताब पर, फइन अरदता अन तारिफ अन्नहु अला अय्य शक्लिम मिनल अश्काल फअलैका बित्तहलील, बस अगर आपका यह इरादा हो कि आप ये जान लें कि अश्काल में से किस शक्ल पर है यह कियास, फ अलैका बित तहलील, तो आप पर तहलील लाजिम है, वह हुआ अक्सु तरतीबी, और ये वो इस मजकूरा तरतीब का अक्स है। हत्ता यहसुल अल मतलूब, यहां तक के मतलूब हासिल हो जाए। फंजुर इलल कियास इल मुंतिज लहू, बस आप देखिए उस कियास की तरफ जो मुंतिज है उस मतलूब का, जो वो नतीजा दे रहा है, यानी जो मुसन्निफ ने जिक्र किया है और पूरा नहीं है, बेकायदा है। फइन कान फीहि मुकद्दमतुन तुशारिकुल मतलूब बिकिला जुज़ैही फलकियास उस्तिस्नाइयुन, बस अगर उसके अंदर कोई ऐसा मुकद्दमा है तो शारिकुल मतलूबा जो नतीजे के साथ मुशरीक है, बिकिला जुज़ैही अपने दोनों जुजों के साथ, यानी मौजू और महमूल दोनों नतीजे की तरह हैं। फल कियास उस्तिस्नाइयुन, तो कियास इस्तिस्नाई है। व इन कानत मुशारिकतन लिल मतलूबी भी अहदी जुज़ैही फल कियास उक्तिरानियुन, और अगर वो कियास जो है वो शरीक है मतलूब के साथ, भी अहदी जुज़ै मतलूब यानी नतीजा, नतीजे के साथ भी अहदी जुज़ै ही अपने दो जुजों में से किसी एक जुज में वो शरीक है मतलूब के साथ, यानी उस मुकदमे में भी वही जुज है जो नतीजे में है। फल कियास उक्तिरानी यून, तो कियास इक्तिरानी है यानी नतीजे का एक जुज है उसके अंदर, और कियास इक्तिरानी में भी आपने पढ़ा है असगर एक मुकदमे में होता है और अकबर दूसरे में, तो एक मुकदमे का एक जुज कियास के साथ शरीक हो यह कियास इक्तिरानी में होता है। सुम मंजूर इला तरफ़ैल मतलूबी, फिर आप देखिए भाई मतलूब यानी नतीजे की दो तरफ यानी उसके मौजू और महमूल में। लियतमय्यज़ इंदा का सुगरा अनिल कुबरा, ताकि जुदा हो जाए मुमताज हो जाए आपके नजदीक सुगरा कुबरा से। सुगरा यानी आप नतीजे में गौर कर लें इसका मौजू क्या है और महमूल क्या। जो मौजू है वो है असगर, जो महमूल है वो है अकबर। जिसमें असगर होगा वो होगा सुगरा, जिसमें अकबर होगा वो होगा कुबरा। सुम मंजूर इला तरफ़ैल मतलूबी लियतमय्यज़ इंदका सुगरा अनिल कुबरा, फिर आप गौर कर लीजिए मतलूब के दो तरफ़ैन में, ताकि जुदा हो जाए मुमताज हो जाए आपके नजदीक सुगरा कुबरा से। फ़ज़ालिकल मुशारिकु इम्मल जुज़ अल्लज़ी यकूनु महकूमन अलैहि फिल मतलूबी फहिय सुगरा औ महकूमन बिही फीही फहिय कुबरा, फिर वो जो मुशारिक है यानी वो एक जुज जिसमें दोनों शरीक हैं, कौन दोनों शरीक हैं, एक वो नतीजा और एक उसके लिए मुसन्निफ ने जो बेकायदा कियास जिक्र किया उसमें भी एक जुज जिक्र है, मसलन असगर या अकबर। अब उसको देख लो कि ये इसके अंदर असगर है या अकबर है, अगर असगर हुआ तो ये कौन सा मुकदमा है, सुगरा है, कुबरा आपने बनाना है, और अगर इसके अंदर अकबर है तो मालूम हुआ ये कुबरा है, सुगरा आपने बनाना है। ये माना है फजालिकल मुशारिकु इम्मल जुज उल्लदी यकूनु महकूमन अलैहि फिल मतलूबी, तो वो जो शरीक है मुकदमे के अंदर या तो वो जुज होगा जो महकूमन अलैह होगा मतलूब यानी नतीजे में, फहिया सुगरा तो ये मुकदमा सुगरा है, और महकूमन बिही फीही या वो जुज जो है नतीजे में महकूमन बिही है, फहियल कुबरा तो फिर ये मुकदमा कुबरा है। सुम जुम्मल जुज अल आखरा, जुम्म अमर है, अमर है जम्म या जुम्म, अमर क्या आता है मद्दा या मुद्दू से, मुद्दा जी मुद्दा मुद्दी मुद्दू और उमदुद। सुम जुम्मल जुज अल आखरा मिन अल मतलूबी इलल जुज इल आखरी मिन तिलकल मुकदमती, नतीजे में एक मौजू है एक महमूल, इसी तरह मुसन्निफ ने जो जिक्र किया एक मुकदमा उसके अंदर भी एक जुज है या असगर है या फर्ज करो उसमें असगर है तो ये सुगरा हुआ। अब हमें क्या चाहिए, कैसे तलाश करेंगे, इस सुगरा में असगर के साथ जो दूसरा जुज है उसको हद औसत बनाने की हम कोशिश करेंगे, और इस दूसरे जुज को किसके साथ जोड़ेंगे, नतीजे के दूसरे जुज के साथ। बात समझ में आ गई, ये माना है। कहते हैं सुम मजुम मल जुज अल आखरा मिन अल मतलूबी इल अल जुज इल आखरी मिन तिलकल मुकदमती, फिर आप मिलाइए वो जो दूसरा जुज है नतीजे में से उसको इल अल जुज इल आखरी मिन तिलकल मुकदमती इस मुकदमे के दूसरे जुज के साथ। फइन तअल्लफा अला अहदित तालीफातिल अरबाई, बस अगर ये जुड़ गया अला अहदित तालीफातिल अरबाई चार तालीफात में से किसी एक तरीके पर, यानी कियास के चार मुरक्कब जो तरीके हैं उनमें से किसी एक तरीके के मुताबिक ये जुड़ गया। तो फमन जम्मा इलल जुज इल मतलूबी हुवल हद्दुल औसतु, तो बस वो जो जुड़ गया है मतलूब के जुज के साथ, जिसके साथ आपने दूसरा मुकदमा बनाया, हुवल हद्दुल औसतु, वो हद औसत है। वयतमय्यजु शक्लुल मुंतिजु, और जुदा हो गई नतीजा देने वाली शक्ल, यानी वो तैयार हो गई। व इल्लम यतअल्लफा, और अगर चार शक्लों में से कोई शक्ल मुरक्कब न हुई, तो कान अल कियासु मुरक्कबन, तो फिर तो कियास मुरक्कब है। फामल बिकुल्ली वाहिद मिनहुमल अमल अल मज़कूरा, तो फिर आप दोहराइए उनमें से हर एक के साथ यही मज़कूरा अमल, इन दो में से हर एक के साथ यही, यानी जो माकबल में जिक्र हुआ वही अमल दोहराइए। क्या माना? कहते हैं ज़ाइल जुज अल आखरा मिनल मतलूबी, नतीजे में से दूसरे जुज को रखिए। वल जुज अल आखरा मिनल मुकद्दमती, और वो जो उस मुकदमे का दूसरा जुज है उसको रखिए। कमा वज़ाता तरफ़ैल मतलूब फी तकसीम, जैसे आपने तकसीम में नतीजे की दो तरफों को रखा था। क्या किया था? नतीजे की, भाई देखो, एक है नतीजा, एक उसका एक मुकदमा दिया हुआ है, मसलन उसमें फर्ज करो असगर है, इस असगर के साथ जो दूसरा जुज जुड़ा हुआ है इसको अब हमने जोड़ना है किसके साथ? नतीजे के दूसरे जुज के साथ। लेकिन ये जुड़ नहीं रहा, हद औसत नहीं बन रहा, मालूम है ये कियास मुरक्कब है, सिर्फ एक मुकदमे से काम नहीं चलेगा बल्कि क्या करना पड़ेगा, एक और मुकदमा भी लाना पड़ेगा। तो फिर आप वही तकसीम वाला अमल कीजिए। क्या कीजिए? तकसीम वाला अमल कीजिए। किस तरह? इस मुकदमे का जुज लीजिए और उधर नतीजे का जुज लीजिए, तवज्जो है, और फिर इन दोनों से बहुत सारे मुकदमात बनाओ, बाजों में इनको मौजू बनाओ, बाजों में इनको महमूल बनाओ, फिर बाज मुजीबा बनाओ, बाज सालेबा, यहां तक कि हमें दो ऐसे मुकदमे मिल जाएं जो दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। तो बस ये अब पहला एक मुकदमा किसने जिक्र किया? मुसन्निफ ने, और ये दो मुकदमे आपको मिल गए तो ये पूरी कियास की सूरत बन जाएगी। तरीका समझ में आ गया? तो कहते हैं कमा वज़ाता तरफ़ैल मतलूब फी तकसीमी, जैसे कि आपने रखा था यानी जुदा किया था तकसीम में मतलूब की दोनों तरफ़ैन, यानी मौजू और महमूल को। फला बुद्दा अन यकूना लिकुल मिन्हुमा निस्बतुन इला शैइन मा फिल क़ियासी, बस जरूरी है कि इन दोनों में से हर एक की, ये जो दोनों आपने जुज अलहदा कर लिए, एक जुज कहां से लिया? नतीजे से, और एक जुज कहां से लिया? इस मुकदमे से। तवज्जो है, एक तो उसमें असगर या अकबर था ना मुकदमे में, और एक दूसरा जुज था, वो दूसरा जुज भी ले लिया और नतीजे से भी दूसरा जुज ले लिया। अब इन दोनों को आपने जोड़ना है, इनके आपने बहुत सारे मुकदमात तैयार कर लिए, अब इन दोनों में कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए जिससे ये दोनों जुड़ रहे होंगे, यानी जो हद औसत का काम करेगा। अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए फिर तो कियास तैयार हो जाएगा, अगर कोई ऐसी चीज ना मिली मालूम हुआ यह कियास मुंतिज नहीं है। तो कहते हैं फला बुद्ध अन यकून लिकुल मिन्हुमा निस्बतुन इला शैइन मा फिल कियासी, बस जरूरी है कि इन दोनों में से हर एक की निस्बत हो किसी एक चीज की तरफ कियास में। व इल्ला, और अगर ऐसा ना हो, यानी कोई एक चीज भी दोनों में मुश्तरक न मिली जिससे दोनों जुड़ रहे हैं, तो लम यकुन इल कियास मुंतिजन लिल मतलूबी, तो इस सूरत में कियास मुंतिज लिल मतलूब नहीं होगा, यह वाला नतीजा नहीं देगा, यह तैयार नहीं हो सकता, मालूम हुआ यह कियास दुरुस्त नहीं है। फइन वजदता हदन मुश्तरिकन बैनहुमा, बस अगर आप कोई ऐसी हद पालें जो दोनों में मुश्तरक है, फकत तम्मल कियास, तो तहकी कियास ताम हो गया, पूरा हो गया। वह तबैयना तिलकल मुकदमात वल अशकाल वल नतीजतु, और जाहिर हो गए वो मुकदमात भी और शक्लें भी और नतीजा भी, ये मुरक्कब कियास बन गया भाई। फकौलुहु, पस मुसन्नी फकौल वह हुआ अक्सुहु, वह हुआ तहलील जो है तकसीम का अक्स है। क्या माना? ऐ तकसीरुल मुकद्दमाती इला फौकिन, यानी इसमें तकसीरुल मुकद्दमात हैं इला फौकिन, ऊपर की तरफ। वो क्या था? तकसीरुल मुकद्दमात मिन फौकिन था, और ये है इला फौकिन भाई। वह हुआ नतीजतु, और फौक से क्या मुराद है? वो नतीजा ही है, कमा मर रवज हु, जैसे उसकी वजह गुजर गई। उसकी वजह के फौक से मुराद नतीजा है, क्योंकि एक है कियास और एक है नतीजा। कियास यानी दलील, और दलील और नतीजे में से आला क्या? नतीजा आला है, तो लिहाजा फौक से मुराद नतीजा है भाई। यह माना है, कहते हैं ऐ तकसीर उल मुकदमाती इला फौकिन, यानी मुकदमात को ज्यादा करना ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ यानी नतीजे की तरफ। तो कहते हैं वह हुआ नतीजा तू, और फौक जो है वो नतीजा है, कमामर रबज हु, जैसे कि उसकी वजह गुजर गई। बात अच्छी तरह समझ में आ गई। हासिल कलाम फिर सुन लीजिए। आज हमने रुउस समानिया में से आठवीं किस्म का कुछ हिस्सा पढ़ा। आठवीं किस्म जो थी वो तालीम के तरीके, और तालीम के तरीके चार हैं, इन्होंने आपको बतलाया। नंबर एक है तकसीम, नंबर दो है तहलील, नंबर तीन है तहदीद, और नंबर चार है बुरहान। आज हमने तकसीम और तहलील के बारे में पढ़ा। तकसीम मैंने बताया, इसी का दूसरा नाम तरकीबुल कियास भी है, और इसके अंदर आप नतीजे से दलील की तरफ जाते हैं और उसके नतीजे के मौजू और महमूल को लेते हैं और फिर उनसे बहुत सारे मुकदमे बना लेते हैं। यानी वो मौजू और महमूल से बहुत से मुकदमे बना लिए, किसी में उनको मौजू बनाया, किसी में उनको महमूल बनाया, कोई मुजिबा बनाए मुकदमे, कोई सालिबा बनाए, जितने मुकदमे हम तैयार कर सके। ये तो हम मैंने तो एक दो तीन मिसालें जिक्र कर दी, लेकिन अगर आपको बाकायदा कोई इस तरह का जरूरत पेश आ रहा है तो बड़ी मेहनत करना पड़ेगी भाई। तो फिर इस तरह बहुत सारे मुकदमात आप तैयार कर लेते हैं और फिर उनमें गौर कर लें कि उनसे उन मुकदमात में कोई दो ऐसे मुकदमात मिल जाएं जिनसे शक्ल अव्वल या सानी या सालिस या राबिया तैयार हो जाए, तो इस तरह हमें वो दलील हासिल हो जाएगी जो वो मतलूबा नतीजा देगी। और दूसरा तरीका तहलील है। तहलील यह है कि मुसन्निफ हजरात बाज़ औक़ात किताब के अंदर बेकायदा तौर पर कयास को जिक्र कर देते हैं और पढ़ने वालों के सुपुर्द कर देते हैं कि पढ़ने वाला इतनी मंतिक तो जानता ही होगा, वो खुद ही नतीजे तक पहुंच जाएगा, कयास बना लेगा। तो उससे फिर कयास बनाना पड़ता है, और उसका तरीका यह है कि अगर वो जो नतीजे के दोनों अज्जा हैं अगर वो किसी एक जगह जिक्र हैं, इकट्ठे जिक्र हैं कयास के अंदर भी, तो मालूम हुआ ये कयास इस्तेस्नाई है, और अगर दोनों में से एक जिक्र है तो मालूम हुआ ये कयास इख्तिरानी है। तो वो एक जुज जिक्र है नतीजे का मुकदमात में, दूसरा जुज आपने मिलाकर मुकदमा खुद बनाना है। अगर वो जुज जो जिक्र है वो असगर है तो मालूम हुआ ये मुकदमा सुगरा है, कुबरा आपको तैयार करना पड़ेगा, और अगर वो जुज जो जिक्र है मुकदमे में वो अकबर है, मालूम हुआ ये कुबरा है, आपको सुगरा खुद बनाना पड़ेगा। और फिर इस तरह आप उन कयास तैयार करते हैं और नतीजे तक पहुंचते हैं। और बाज औकात ऐसा होता है कि कयास मुरक्कब होता है, एक मुकदमा और साथ मिलाओ तो नतीजा नहीं आता, तो फिर आपको ज्यादा मुकदमात साथ मिलाने पड़ते हैं। और उसका तरीका यह है कि एक मुकदमा तो इन्होंने दिया हुआ है, मसलन उस मुकदमे में क्या है, असगर है, और असगर के साथ कोई महमूल भी है। अब आप इस महमूल को ले लेंगे जो मुकदमे का दूसरा जूस है, और उधर नतीजे के दूसरे जूस के साथ आप इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर जुड़े तो ठीक है, अगर नहीं जुड़ता तो फिर दरमियान में कोई तीसरी चीज हद औसत के तौर पर लाकर दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, यहां तक कि नतीजे तक हम पहुंच जाएं। और अगर फिर भी नतीजे तक नहीं पहुंचते तो मालूम हुआ कि ये जो कयास जिक्र किया है कि साहिब किताब ने, यह मुंतिज नहीं है, यह नतीजे तक पहुंचाने वाला नहीं है। बात अच्छी तरह समझ में आ गई, तकसीम और तहलील अच्छी तरह वाज़े हो गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।